नमस्कार, आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। हु एम आई, ये सवाल कब से परेशान कर रहा था, कब से हम इसे तलाश रहे थे। और पिछली जो पूरी हमने बातचीत की है उसमें एक बात साफ हुई, एक सोल कॉन्शियसनेस की जो बात थी उस एस्पेक्ट को हमने समझा और ये जाना कि किस तरह से मैं जो आत्मा हूं वो तीन तरह से काम करता हूं। जब मैं सोच रहा होता हूं, जब विचार आ रहे होते हैं तो माइंड हो जाता है, जब इंटेलेक्ट यानी कि जब डिसीजन ले रहे होते हैं तब इंटेलेक्ट काम कर रहा है, और जो काम किया गया है उसका इम्प्रेशन जो मैं अपने पास रखता हूं वो संस्कार बन जाता है। इस पूरे ज्ञान को, ये एहसास समझ के कि हु एम आई, आगे बढ़ते हैं। और इस सोल कॉन्शियसनेस की जो हमने उस वक्त बात की थी उसे कुछ दिन तक हमने कोशिश की है, आगे जानते हैं इस सफर को और आगे कैसे बढ़ाना है। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
कितनी कॉन्फिडेंस से मैं ओम शांति कह पा रही हूँ, बिकॉज आई रियलाइज यू नो आई एम अ पीसफुल लविंग हैप्पी सोल। आई एम एबल टू से इट नाउ। एक्चुअली ऑल द व्यूअर्स आउट देयर मेरे ख्याल से वो भी इस बात को खूब अच्छी तरह से जान गए हैं। आगे कहाँ जाएंगे?
हमने अपने आप को पहचाना। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम अपने रिलेशनशिप्स को देखते हैं, संबंध, क्योंकि वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी सिटिंग एट होम कि एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं और वो सभी हमारे साथ करें। अगर और आप सबसे अच्छा, पहले अच्छा, आप हमारे साथ करेंगे। नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं, दिस इज जस्ट नोइंग अबाउट आवर सेल्फ। अगर हमारे पास एक पेपर और पेन हो तो हम ड्रॉ करके करें, नहीं तो वी कैन जस्ट डू इट मेंटली। अगर पेपर और पेन लेकर कर रहे हैं तो एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कीजिए, यू डू इट इंटरनली,
ओके,
एंड जस्ट राइट वन नेम। उसमें एक नाम लिखिए जिनके साथ आपका सबसे क्लोज रिलेशनशिप है।
ठीक है,
वेरी इजी। सबसे ट्रस्टवर्दी, क्लोज, जो भी कहें, जो भी आपके क्राइटेरिया
है, नजदीक है,
यू नो, तो वन नेम जो आपके माइंड में आता है। उसके बाहर एक और सर्कल ड्रॉ करें और फिर उसमें दो और नाम लिखिए जो नेक्स्ट दो आते हैं।
ठीक है,
उसी प्रायोरिटी वाइज लिख दिया आपने। अब एक और सर्कल ड्रॉ कीजिए,
ओके,
और पांच और नाम लिखिए।
पांच, ओके, पांचवा नहीं मिल रहा मुझे।
सी, नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप, बिकॉज अब हम मूव आउट कर रहे हैं ना, तो एनी रिलेशनशिप, इट कैन बी आपके फ्रेंड्स, इट कैन बी पड़ोसी, इट कैन बी जिनके साथ हम काम करते हैं, कोई भी, स्टेप वाइज, मतलब बेसिकली जिनके साथ हमें कॉन्टेक्ट में
कॉन्स्टेंट
आते हैं सारा दिन में, इंटरेक्शन में आते हैं। पांच और लिख लिया ना, तो हमने लिखे एक, फिर उसके बाद दो एंड पांच और। डू वॉन्ट टू मेक वन मोर सर्कल?
नो
नो, दिस इज इनफ। अच्छा, आप शेयर करेंगे सबके साथ?
अच्छा,
अगर बहुत पर्सनल नहीं तो आपके फर्स्ट सर्कल में कौन है?
माय डॉटर।
आपकी डॉटर। आपके फिर नेक्स्ट सर्कल में?
माय सेकंड डॉटर।
एंड टू नेम्स आने थे,
एंड माय मॉम
एंड योर मदर। ठीक है, फर्स्ट डॉटर, फिर सेकंड डॉटर एंड मदर। अब आपके थर्ड सर्कल में पांच नाम और आने थे, वो कौन होंगे?
माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय हस्बैंड, नाउ कम्स द थर्ड सर्कल, एंड माय फ्रेंड्स एंड माई वेरी क्लोज फ्रेंड, अनदर क्लोज फ्रेंड।
ठीक है, अब अगर हम इस एक्सरसाइज को और भी करते जाते तो एक सर्कल और आता जिसमें शायद आपके वर्किंग कोलीग्स आ जाते, क्योंकि नेक्स्ट प्रायोरिटी वो हो जाती है। फिर एक सर्कल और आता जिसमें हमारे पड़ोसी, रिलेटिव्स, दूर दूर के रिश्तेदार आते, एंड सर्कल सर्कल्स बहुत सारे बनते जाते। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि गॉड, परमात्मा किसी सर्कल में नहीं आया,
बिकॉज परमात्मा के साथ यू नो लाइक
हम रोज सुबह उठकर कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, गॉड इज माय फादर, मदर, फ्रेंड, गाइड, टीचर, लिबरेटर। मतलब हर रिलीजन में हमने रोज यही याद किया कि मेरे सारे संबंध एक तेरे से ही है।
हाँ,
तू ही मेरा सब कुछ है, बाकी सब तो बस खेल है, ड्रामा है, लेकिन मैं सब कुछ तो आप ही हो। लेकिन जब हम एक्चुअल लिखने पर आए तो हमारे तीसरे, चौथे, पांचवें सर्कल तक भी उसका नाम,
इफ आई लुक एट इट, मैंने तो मुझे नहीं मालूम दर्शकों ने क्या क्या होगा, बट यस विद मी आई लाइक दैट्स सो बैड,
इट्स नॉट बैड, इट्स जस्ट द ट्रूथ। देयर इज नो नथिंग बैड अबाउट इट. इट्स जस्ट दैट ये हमारे जीवन की सत्यता हमारे सामने आई. अगर हर एक अपने सर्कल्स को भी देख ले,
और हम कितना फिर झूठ बोलते हैं हर रोज की यू नो लाइक आप हमारा सब कुछ हो.
हम झूठ नहीं बोलते, हमें वो सब सिखाया गया इसलिए हम वो रोज उसको दोहराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है इसलिए वो हमारे किसी सर्कल में फिट नहीं हुआ. अगर हमने परमात्मा के साथ सचमुच उसमें से कोई एक संबंध भी एक्सपीरियंस किया होता तो वो हमारे कोई ना कोई सर्कल में तो आता. फर्स्ट सर्कल में ना भी आता, तीसरे चौथे सर्कल में तो आ जाता कहीं ना कहीं, लेकिन वो तो हमारे किसी सर्कल में ही नहीं आया. यू से एंड दैट्स व्हाई वी समटाइम्स रियलाइज कि वी प्रोबली डोंट नो हिम.
हमने बात ये की कि उस परमात्मा को तलाश रहे क्योंकि हम उसका एहसास नहीं कर पा रहे. दूसरी तरफ जब हमने ये देखा था कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, तो ये बात सामने आई थी कि हर चीज, चाहे पैसा कमा रही हूं या किसी रिश्ते में भी जा रही हूं, एक्चुअली मैं तलाश रही हूं हैप्पीनेस. यू नो हम खुशी ही तलाश रहे होते हैं और वो परफेक्ट रिलेशनशिप तलाश रहे होते हैं. तो वो इवन ईश्वर के साथ भी
राइट. एक्चुअली अगर देखा जाए कि हम ये दो चीजें हमेशा तलाश रहे हैं, हिस्ट्री में आप देख कितना भी पीछे चले जाइए, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दीज टू थिंग्स, परफेक्ट हैप्पीनेस एंड परफेक्ट रिलेशनशिप. यू नो हैप्पीनेस में भी एक होता है कि बाह्य हैप्पीनेस, एक थोड़ा सी खुशी, और एक है आंतरिक खुशी, ब्लिस जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख, जो इन इंद्रियों से नहीं मिलने वाला है. तो हर एक ये खोज रहा है, एक ये परफेक्ट रिलेशनशिप, एक ऐसा परफेक्ट संबंध, और ये अति इंद्रिय सुख. और हमेशा यही कहा जाता है कि हम खोज उसी चीज की करते हैं जिसको हमने कभी ना कभी अनुभव किया है. You will search only for that which you have sometime known or experienced.
Because again you start, you know, hankering.
Yes, because वो जो चीज आपने एक बार experience कर ली थी वो आपकी memory में बैठ गई है, और आज जब आपको वो नहीं मिल रही है you start looking for it. लेकिन अगर आपने उसका कभी अनुभव नहीं किया है तब आपको उसकी खोज नहीं होगी, बिकॉज आपने टेस्ट नहीं किया.
You don't even know it.
Yeah, we have experienced this. हमने परमात्मा के साथ एक perfect relationship, वो अति इंद्रिय सुख कभी ना कभी अनुभव किया था. कब अनुभव किया था वो अभी याद नहीं है, वो हम देखेंगे आगे चल के, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने वो एक परफेक्ट रिलेशनशिप और वो अति इंद्रिय सुख हर आत्मा ने अनुभव किया था. और उसकी मेमोरी हर आत्मा के अंदर स्टोर्ड
संस्कार के रूप में जो
संस्कार
इंप्रेशन जो
राइट कि वो खुशी, वो अति इंद्रिय सुख चाहिए, यू नो, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. तो उस चीज की खोज में हम हरेक लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि आज हम वो संबंध उससे नहीं अनुभव कर रहे हैं,
हम
तो कहीं ना कहीं वो आपस में तलाशने कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लेवल पर, रूहानी लेवल पर उस खुशी को नहीं अनुभव कर पाते, तो हम मेंटल या फिजिकल लेवल पर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अपने जो फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं उनमें वो ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं. लेकिन वो हमें फिर तभी मिलेगी जब हम वो परफेक्ट रिलेशनशिप एक उसके साथ एस्टैब्लिश कर लेंगे, तभी हम वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव सच में कर पाएंगे जो हर आत्मा चाहती है.
सो वो सोलमेट वाली जो बात.
हाँ, यस.
Again, you know, we're all we're talking about ki, you know, you are my soul mate. लेकिन फिर उसमें परेशानी,
उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती
है. कई रिलेशनशिप ऐसे लगते हैं कि लाइक इट्स डिफिक्स लाइक दिस, यू नो, ऐसा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता, परफेक्ट रिश्ता है, लेकिन वो हमेशा ही देखा गया है कि इट हैपन्स.
सोल मेट वर्ड कितना अच्छा है कि सोल का, आत्मा का जो परफेक्ट मेट है, तो वो आत्मा का परफेक्ट मेट वो एक परमात्मा ही है, क्योंकि वो परमात्मा ही है जो मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेगा, जो मुझे अनकंडीशनली प्यार करेगा, जो मुझे क्षमा करेगा और फिर से उठा लेगा, नो एंड जो हर्ट नहीं होगा मेरी किसी भी बात से. तो वो परफेक्ट सोलमेट एक परमात्मा ही हो सकता है.
तो आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वही परफेक्ट मिलन हो सकता है. एक यहाँ पे जब हम बात करते हैं परमात्मा की, Who is he? You know, that's again a big question. मैं कहाँ, कौन है, कौन है परमात्मा? मैं परमात्मा को मंदिरों में ढूंढूं, मस्जिदों में, कौन है परमात्मा?
Actually, परमात्मा के बारे में इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हो गए हैं, और उसकी वजह से हमारा माइंड थोड़ा क्लोज हो गया है, यू नो, बिकम थोड़ा सा हम विदड्रॉ कर गए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी बिलीफ सिस्टम्स हैं परमात्मा के बारे में, वो हमारे संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारे रिलीजन और हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमें मिले, लेकिन वो एक बिलीफ सिस्टम है. जैसे हमने पहले भी देखा था कि एक बिलीफ, एक मान्यता, जरूरी नहीं है कि वो मान्यता सच हो,
सही हो.
इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ बिलीफ इज द ट्रूथ, इट इज अ बिलीफ. तो रिलीजन ने, धर्म ने हमें बहुत सारी बिलीफ्स दी हैं. सबसे पहले बहुत अच्छी बात जो धर्म ने हमें दी कि वो बिलीव करवाया कि परमात्मा एग्जिस्ट करता है. तो रिलीजन मेड अस बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. लेकिन साथ साथ जो एक बिलीफ हमें दिया कि उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्रोच करना या उसके नजदीक आना, ये बहुत मुश्किल है. तो हमारे अंदर ये भी एक बिलीफ आ गया कि परमात्मा कोई बहुत डिस्टेंट, कोई बहुत दूर चीज है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है. आई बिकेम फार फ्रॉम हिम. तो दिस वॉज ऑल्सो अ बिलीफ. ये मुझे सिखाया गया है कि परमात्मा कोई शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है, वो बहुत दूर है, आप उससे कोई उसके नजदीक नहीं जा सकते हो. अगर आपको परमात्मा के नजदीक जाना है तो शायद आपको बहुत जन्मों की
तपस्या करनी पड़ेगी ना, तार जोड़ने के लिए आपको कितने कितनी चीजें.
तो ये सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं बेस्ड ऑन सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली. तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में जो हम कहते हैं ना, फर्क क्या है? जब रिलीजन हमें ये सारा ज्ञान दे रहा है तो आध्यात्मिकता की क्या जरूरत है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी हमें एक्सपीरियंस की तरफ लेकर जाती है. रिलीजन ने हमें बिलीफ्स दिए हैं और कहीं ना कहीं हमने वो बिलीफ्स को एक्सपीरियंस करे बिना ही एक्सेप्ट कर लिया. तो इसलिए हम कई बार डगमगा जाते हैं कि ये वाला है सही है या ये वाला सही है. स्पिरिचुअलिटी हमारे माइंड को ओपन करता है. वो भी एक थॉट के साथ स्टार्ट होगा लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना होगा. तो वो हमारे माइंड को ओपन करता है कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड. परमात्मा के साथ एक बहुत ही निकट, बहुत ही नजदीकी संबंध अनुभव करना ये संभव है. ये स्पिरिचुअलिटी हमें उसकी तरफ लेकर जाता है.
पहले हमने अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो सबसे पहले जो संबंध हमने जोड़ा अपने आप से.
यस, बिकॉज जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे तो वो कौन है जो उससे संबंध जोड़ रहा है. यू नो इट्स लाइक सपोज आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा है. I get to know you and there is a relationship. So first I need to know myself. Unless I know myself, there's no question of a relationship with you. तो spirituality सबसे पहले हमें अपना परिचय दिया, उसके बाद हमें उससे संबंध जोड़ना सिखाया. And अनुभव, meditation क्या करता है? Meditation एक ब्रिज बन जाता है उस बिलीफ से अनुभव की तरफ. आप एक बिलीफ से शुरू करते हैं लेकिन उसको अनुभव करना, ये मेडिटेशन हमें हेल्प करता है. कि जैसे हमने अभी देखा वो सर्कल में कहीं भी परमात्मा का नाम फिट नहीं हुआ क्योंकि हमने परमात्मा के साथ रिलेशनशिप कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है. और जो हमारी बहुत सारी मान्यता हुई कि परमात्मा हाँ कोई शक्ति है, हमें उसकी आराधना करनी है, हमें उसकी महिमा करनी है, लेकिन हम उसके सामने बहुत
छोटे हैं, हमारा हम कुछ नहीं है. हम प्रार्थना करेंगे, हम रोएंगे तो वो हमारी सुनेगा. मतलब
हम नीच है, पापी है, कपटी है, हम उसके चरणों की धूल है. यू नो सो इट वॉज ऑलवेज ग्लोरिफाई हिम बट इन द प्रोसेस एब्सोल्यूटली डिग्रेड योर सेल्फ. तो ये भी एक रॉन्ग बिलीफ था. आत्मा एक बहुत अति सूक्ष्म सुंदर प्योर शक्ति है, तो वो अपने पिता को याद कर रही है. उसके लिए उसको अपने आप को डिग्रेड नहीं करना क्योंकि फिर संबंध नहीं जुड़ेगा. फिर रिलेशनशिप नहीं जुड़ेगा.
मैं अगर खुद पे ही विश्वास नहीं, मतलब मैं अपने
अगर मैं सोचूं कि आप बहुत ऊंची एक हस्ती है और मैं तो आपके सामने कुछ हो ही नहीं, मैं आपके चरणों में भी बैठने लायक नहीं हूं, तो क्या रिलेशनशिप?
नो, रिश्ता बन ही नहीं सकता.
रिश्ता बन नहीं सकता. तो स्पिरिचुअलिटी हमें वो संबंध भी जोड़ती है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्रेडिंग अर्थ, कि अपने आप को नीच, उल्टा अपने स्वमान को जागृत करके फिर उस परमात्मा की तरफ लेकर जाती है. कि पहले अपने को पहचानो कि यू आर अ ब्यूटिफुल बींग, यू आर अ प्योर कॉन्शियंट बींग. तो उसको पहचान के फिर उसको याद करो. तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली एक पर्सनल रिलेशनशिप बना देती है, वेरी पर्सनल. परमात्मा के साथ जो हमारा रिलेशनशिप बनता है, इट इज डायरेक्ट, रियल. इट्स वेरी रियल, डायरेक्ट एंड डायनामिक. इट्स अ लिविंग रिलेशनशिप. ये एक सत्यता है. इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट. यू नो अभी तक परमात्मा एक कॉन्सेप्ट है. यू नो परमात्मा है, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, पता नहीं. किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा. सो इट्स अ कॉन्सेप्ट. तो एक कॉन्सेप्ट के साथ संबंध नहीं जुड़ सकता है. लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि परमात्मा के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप, उतना ही नजदीकी, उतना ही घनिष्ठ रिलेशनशिप जैसे आपने अपनी बेटी का नाम लिखा सबसे पहले. क्यों लिखा वो नाम सबसे पहले?
एक्चुअली आई वांट टू आस्क Yeah, because I feel so close.
हाँ, so you feel it, right? Yeah. तो जब तक आप वो feel नहीं करेंगे आपके मन में वो नाम सबसे पहले नहीं आएगा. तो वो इतना सुंदर relationship आप experience कर सकते हैं कि परमात्मा का नाम शायद आपके first circle में आना शुरू कर देगा.
No, you mean to say it's like the way I'm talking to you, I talk to him.
It is a very that's why because communication के बिना तो relationship नहीं हो सकता. You know. तो रिलेशनशिप इतना प्योर रिलेशनशिप, इतना डायनामिक रिलेशनशिप हम परमात्मा के साथ अनुभव कर सकते हैं.
एंड दैट्स थ्रू
आर कम्युनिकेशन, आर मेडिटेशन, आर रिलेशनशिप. वो हम देखेंगे. बट फर्स्ट इम्पोर्टेंट व्हाट वी वांट टू शेयर विद एवरीबडी इज कि ये जो सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं वो गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है. लेकिन जब हम इस यात्रा पर चलेंगे अपने अगले कुछ एपिसोड्स में, ट्राई एंड कीप योर माइंड ओपन, माइंड ओपन टू द आइडिया ऑफ अ ब्यूटिफुल क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड.
यू नो, बिकॉज वो बिलीफ लेकर अगर हम एक्सपीरियंस कर लेंगे तो वो सच बन जाता है. एक्चुअली
अगर देखा जाए, अगर आत्मा आत्मा के साथ संबंध जोड़ सकती है, आत्मा परमात्मा के साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं जोड़ सकती?
क्योंकि हम जानते ही नहीं ना. देखिए
हम,
यू नो, बिकॉज आई नो यू. जब तक मैं आपको नहीं जानती थी, मैं कहा, मुझे पता नहीं था, कुछ भी था. नाउ आई नो यू.
एब्सोल्युटली. तो रिलेशनशिप जुड़ सकता है. तो वो उसी तरह. सो वी वांट एवरीवन, ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, दे नीड टू ओपन देयर माइंड कि परमात्मा जो हमारा मात पिता है उसके साथ हम एक बहुत सुंदर, एक बहुत पर्सनल और बहुत क्लोज, वेरी क्लोज रिलेशनशिप हम उसके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अभी तक परमात्मा एक कॉन्सेप्ट था, यू नो, एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट था कि परमात्मा ये हो सकता है, ये हो. इंटेलेक्चुअली ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर,
एक्सेप्ट नहीं कर पाते. यू नो,
कई बार लोग कहते हैं साइंस प्रूफ करे ना भगवान है. गॉड इज नॉट समथिंग विच यू कैन प्रूव साइंटिफिकली. इनफैक्ट गॉड शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक स्क्रूटनी लाइक दिस. यू नो, साइंस इसको प्रूव करे. इट्स अ रिलेशनशिप. साइंस मेरा और आपका रिलेशनशिप भी प्रूव नहीं कर सकता. इट्स अ फीलिंग विच आई शेयर एंड यू शेयर. नो साइंटिफिक इक्विपमेंट कैन प्रूव दैट रिलेशनशिप राइट नाउ. एंड यू विल अंडरस्टैंड कि सारे आंसर्स आपके पास ही हैं, तो धीरे धीरे सारे आंसर्स आपको मिलते ही जाएंगे. अभी तक क्या हुआ, हर एक ने हमें परमात्मा का परिचय दिया. एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था, एक बिलीफ था, या किसी और का अनुभव था. ये भी हो सकता है कि किसी ने परमात्मा के साथ बहुत अच्छा अनुभव किया है और वो हमारे साथ शेयर करे. लेकिन उसके अनुभव से हमारा अनुभव नहीं क्रिएट हो सकता.
Definitely.
उससे हमारी कम्युनिकेशन नहीं जुड़ सकती. ये यात्रा हमें खुद ही करनी पड़ेगी. उस परमात्मा की तरफ अपने मन को खोलकर उसकी शक्ति को एकाग्र करना, ये हमें करना पड़ेगा. इट्स लाइक सेइंग कि आप एक फूल को ले लो और उसको एक कबर्ड में लॉक कर दो और आप कहो कि सूर्य की शक्ति उस पर आनी चाहिए. नो, वो है, लेकिन उसकी शक्ति को लेने के लिए आई विल हैव टू फर्स्ट ओपन अप टू हिम. I will have to open out and I will get everything from him. आज दिन तक हम प्रार्थना करते आए, महिमा करते आए, जब तब सब कुछ बहुत किया, प्राप्ति भी हुई, लेकिन जो हमारे वो आंतरिक घाव थे वो हील नहीं हुए अभी तक. वो हमारी जो कमजोरियां थी, हमारे जो कड़े संस्कार थे, वो अभी नहीं बदले. बिकॉज हम सिर्फ वर्शिप कर रहे थे, हम सिर्फ उसकी महिमा गा रहे थे, हम उसे बहुत प्यार कर रहे थे. और उसका फायदा होता है, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट की तरफ अपना बहुत स्नेह एक्सप्रेस करो तो आपको फायदा होगा. क्योंकि हमने समझा कि जब वी गिव लव टू समबडी, इट गोज थ्रू मी, आई एक्सपीरियंस इट एंड देन आई गिव इट टू समबडी. तो जब हमने परमात्मा के किसी भी स्वरूप को लेकर अपना बहुत स्नेह प्रकट किया तो हमें बहुत अच्छा लगा. इसलिए आप देखिए, लोग भाव विभोर हो जाते हैं, लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो इतना स्नेह भरा हुआ है परमात्मा के लिए. तो जब वो प्रकट करते हैं तो वो पहले उनको मिलता है और इसलिए वो इतने भावनात्मक हो जाते हैं, जो बहुत अच्छा है. लेकिन उससे उनके अंदर की जो कमी कमजोरियां, उसको नहीं वो पहचान
पाते. नहीं जुड़ पाया ना. कि
इट्स लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर. यू नो, डॉक्टर हमें हील कर सकता है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाकर सिर्फ डॉक्टर को ही वर्शिप करते रहे या उसकी महिमा करते रहे. आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपके अंदर ये हीलिंग पावर है, आप तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उससे अपनी ट्रीटमेंट ना करवाएं. सिर्फ उसकी महिमा करें और वापस आ जाएं, तो हमारे घाव कहाँ ठीक हुए या हमें ये कहाँ समझा कि हमें क्या करना है अपने घाव को ठीक करने के लिए। इसी तरह परमात्मा भी तो हमारे सारे कमी कमजोरियों को खत्म कर हमें अपने वो ओरिजिनल स्वरूप में लाने वाला है, लेकिन हम सिर्फ उसकी महिमा करें।
I just want to ask if we'll have a conversation with him, he's going to answer back.
You want to go very ahead right now?
No. I just
yes,
you know,
absolutely.
He'll be see when you say that he's going to heal us. Is it possible?
Yeah, whatever I'm sharing with you now is only from my personal experience. ठीक है, परमात्मा के साथ जो अनुभव किया है, जो वो पर्सनल रिलेशनशिप अनुभव किया है, इनफैक्ट एक एक बात जो आपसे शेयर होती है इतने सारे एपिसोड्स में, जितनी सारी हम ज्ञान की इतनी गहरी बातें करते आए हैं, वो डायरेक्टली उस परमात्मा से ही तो मिली हुई है, नहीं तो हमें क्या आता था।
दैट्स व्हाट लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी, यू नो, कि आप, मैं हमारे दर्शकों के सामने ये क्लियर भी कर देती हूँ मैं बात अभी, कि आपको कैसे इतनी सारी बातें पता है। तो मुझे तो खैर बिल्कुल ही नहीं पता, लेकिन आई सेड यू नो, बट
लेकिन आई डिडंट नो एट ऑल। अगर मैं थोड़े साल पहले अपनी लाइफ को देखूं तो आई वॉज लिविंग विद ऑल दीज बिलीव्स, हाँ गुस्सा करना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, यू नो ऑल दीज, परमात्मा को जानते नहीं थे। ये तो परमात्मा ने जब डायरेक्ट ये ज्ञान दिया, और सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, वो स्नेह भी दिया, वो शक्ति भी दी, जिससे हम उस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में धारण कर सकते हैं, तब तो हम आज सबके साथ वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो दिया हुआ सारा उस टीचर का है।
दिस इज समथिंग, यू नो, लाइक इट्स Actually, it is happening. It's true. एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम सब भगवान को कहते हैं कि परमात्मा है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं, उनको याद क्यों नहीं रख पाते हम?
देखो, सभी लोग परमात्मा को याद करते हैं। कई लोग बहुत विधि पूर्वक रोज टाइम निकाल के, या जो भी, वो हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक इट कि हम हर रोज सवेरे 10 मिनट निकाल के परमात्मा को याद करते हैं, ठीक है? और सारा दिन में हम बहुत सारे लोगों को याद करते हैं। अब जो सारा दिन में हम लोगों को याद करते हैं ना, वो बिना मेहनत वाली याद होती है, एफर्टलेस रिमेम्बरेंस। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। जो लोगों की याद है, हम न चाहते हुए भी करते हैं, ना हम उनकी फोटो सामने रखते हैं, ना चाहते हुए भी उनकी याद आती है। इसका मतलब याद करना बहुत ईजी है, किसी ने हमें याद करना नहीं सिखाया। लेकिन जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं, तो पहली बात तो हम अलग से 10 मिनट निकालते हैं, क्योंकि काम करते हुए याद करना तो इम्पॉसिबल है। तो हम 10 मिनट निकालते हैं, हम अलग एक स्थान पर बैठते हैं, फिर हमारे सामने कोई स्वरूप है, कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम एक मूर्ति या चित्र रखते हैं या कुछ भी, और फिर हम कोई गीत चलाते हैं, मतलब वायुमंडल बहुत अच्छा बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड बहुत सिंसियरली कि ये 10 मिनट मुझे सिर्फ उसको याद करना है। अब वो 10 मिनट कैसे बीतते हैं?
यू नो, कई कई थॉट्स, कई कई बातें आ रही है, या यू नो प्रोसीजर,
ठीक है ना? तो मतलब 10 मिनट आप याद करने बैठे उस एक शक्ति को जिसके साथ आपके सारे संबंध है, लेकिन उस 10 मिनट में भी थोड़ी देर याद रुकेगी, फिर आएगा बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा किचन में क्या बन रहा है, आज सारा दिन में किसको मिलना है, फिर याद पता ही नहीं चलेगा, फिर 10 मिनट बीत गए और लगेगा काम पूरा हुआ, मैं 10 मिनट तो बैठ गए। फिर लोग कहते हैं भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है, मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। हमें किसी ने याद करना नहीं सिखाया, आपने बच्चे को नहीं सिखाया कि अपने मम्मी पापा को कैसे याद करना है। तो इसका मतलब याद करना एक नेचुरल चीज है आत्मा के लिए, वो सबको याद करती है, यहाँ तक कि जो लोग उसको नहीं अच्छे लगते उनको भी याद करती है। लेकिन उसको याद करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए इतना एफर्ट करते हैं, फिर भी कहते हैं जी 1 मिनट याद रुके, बाकी टाइम तो याद इधर। वाई?
क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं, ना पहचानते हैं, मतलब तो इसीलिए इतनी सारी इमेजेस गड़मड़ हो जाती हैं फिर, कि हु इज रियली, यू नो, कौन है वो?
क्योंकि जैसे हमने देखा ना, हम एक कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान कोई है, शक्ति, जिसे हम जानते नहीं, जिसे हम पहचानते नहीं। आजकल लोग कहते हैं हम तो भगवान को मानते हैं, यू नो, मानते हैं वो, आई बिलीव इन गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उनको जानते हैं, क्या आप उनको पहचानते हैं? क्योंकि जब तक जान पहचान नहीं होगी, तब तक संबंध नहीं जुड़ेगा, और तब तक याद करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है ए खुदा, तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, तेरे जलवों से रोशन जमी आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ, तेरी परदा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है, ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां, धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां, सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ, तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान, तू बदनाम है, ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ।
अगर हम याद करें तो यहाँ तक बात पहुंची थी कि एक व्यक्तिगत रिश्ता मैं परमात्मा के साथ स्थापित कर सकती हूँ, एक ऐसा संबंध जो परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, जो मैं सोल मेट की तलाश कर रही थी वो वहां खत्म होगी। पर बात यहां रुकी थी कि परमात्मा को तलाशूंगी कैसे, कौन मुझे उससे तारुफ करवाएगा, कौन परिचय कराएगा।
अगर हम आपके परिवार के कुछ सदस्यों को अभी यहां बुलाते हैं, ठीक है, योर मदर, हस्बैंड, डॉटर्स, फिर कुछ आपके फ्रेंड्स, कुछ आपके कोलीग्स, सब लोग जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और सबको कहें कि आपका परिचय दें, ठीक है, तो सभी लोग एक ही हस्ती की बात करेंगे, कोई आपके बहुत क्लोज है, कोई थोड़े दूर है, लेकिन वो फिर भी आपको जानते हैं, राइट, एंड सभी लोग आपके बारे में मुझे बताएंगे या हम सबको बताएंगे, तो क्या वो सब एक ही जैसा इंट्रोडक्शन देंगे?
बिल्कुल नहीं दे सकते,
बिल्कुल नहीं दे सकते। अच्छा, जो सिर्फ जो सबसे क्लोज है, मदर, डॉटर्स, हस्बैंड, अब ये सब तो आपको उतना ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या ये सब आपका जो इंट्रोडक्शन देंगे वो एक ही तरह का देंगे?
उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता जाएगा, बिकॉज उनके अपने कलर्स, अपना रिश्ता जो मेरे साथ है वो,
तो इसलिए जो वो सुनाएंगे आपके बारे में वो सभी एक जैसा नहीं सुनाएंगे, उनमें से कोई भी गलत नहीं होगा।
नो,
वी कैन नॉट से कि यू नो द हस्बैंड इज रॉन्ग और द डॉटर इज रॉन्ग, नहीं, कोई भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि फर्क आ रहा है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है सबके इंट्रोडक्शन में, इसका मतलब कोई भी 100% राइट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में आ रहा है। अब आपका एक्यूरेट परिचय, आप एक्चुअली कौन है, अंदर क्या है, क्या महसूस करती है, क्या सोचती है, आप सारा दिन क्या करती है, आपका सही परिचय कौन देगा? फिर
मैं खुद दूंगी।
आप खुद देंगे ना, वो सब आपके इतने नजदीक है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं देंगे, सब देंगे, कोई रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन कोई भी 100% राइट नहीं होगा। तो आपका 100% राइट इंट्रोडक्शन آپ خود دیکھیں کیونکہ آپ ہی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. ہزاروں ورشوں سے دھرم آتمائیں، مہان آتمائیں، سنت آتمائیں، پنیہ آتمائیں، الگ الگ لوگوں نے آ کر ہمیں اس ایک پرماتما کا پریچے دیا. ہر ایک نے اسے جس درشٹی سے دیکھا، جس سمبندھ سے اس کو پہچانا اور جس سمجھ سے اس کو جانا، تو ان سب نے ہمیں ایک ہی ہستی کا پریچے دیا تھا. الگ الگ کسی کی بات نہیں کر رہا تھا کوئی بھی، وہ سب اس ایک ہی شکتی کا پریچے دے رہے تھے. ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں تھا. دیٹ از 100% کہ جنہوں نے بھی پرماتما کا پریچے دیا کوئی بھی غلط نہیں تھا، لیکن پھر بھی سب کے پریچے میں تھوڑا تھوڑا ویریشن آ گیا. اس کا مطلب کوئی بھی 100% ایکوریٹ نہیں تھا. انہوں نے جس درشٹی کون سے دیکھا انہوں نے پریچے دیا. تو اب پرماتما کا صحیح 100% ایکوریٹ پریچے ہمیں کون دے گا؟
پرماتما خود دیں گے.
رائٹ.
That's logical, you know.
Yeah, that's then, logic. But everything now that we are discussing is logical. It is logical. Okay. کہ اگر آپ کو پرماتما کا صحیح پریچے چاہیے تو وہ آپ کو تبھی ملے گا جب وہ خود آ کر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرے گا. اگر ہم میں سے کوئی بھی انٹروڈیوس کرے تو پھر بھی ایک تھوڑا سا
گیپ رہے گا،
گیپ آئے گا، پرسپشن آئے گی. تو پرماتما جب سوئم آ کر اپنا پریچے دیتے ہیں، ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک بار کہا تھا کہ پرماتما سوئم اس سرشٹی پر آ چکے ہیں اور یہ سارا جو گیان ہمیں ملتا ہے وہ ڈائریکٹ اس پرماتما سے ملتا ہے. سب سے پہلے اپنی پہچان کہ میں کون ہوں، پھر اس کے بعد وہ اپنا پریچے دیتا ہے کہ وہ خود کون ہے. تو جب وہ خود آ کر اپنا پریچے دیتا ہے، وہ پریچے بہت سمپل ہوتا ہے، بیکاز ہی جسٹ انٹروڈیوسز ہمسیلف، وچ از ویری سمپل. وی میڈ اٹ ویری کمپلیکس. ہم نے اپنا پریچے بھی تو کتنا کمپلیکس بنا دیا تھا. آتما پتہ نہیں کون ہے، کون سی شکتی ہے، اندر ہے یا باہر ہے، برین ہے یا مائنڈ ہے، آل سو کمپلیکیٹڈ. تو اسی طرح ہم نے پرماتما کا پریچے بھی بہت کمپلیکس کر دیا کیونکہ ہم ستیتا کو نہیں جانتے تھے. لیکن اس سارے سرشٹی چکر میں ایک ایسا سمے آتا ہے جب پرماتما سوئم آ کر اپنا پریچے دیتے ہیں، اور جب وہ سوئم آ کر اپنا پریچے دیتے ہیں،
دیٹ از
اٹ از سمپل، ویری سمپل، very easy to understand, 100% accurate. And جب آپ 100% کسی کو جان لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا بہت ایزی ہے. جب آپ کسی اور کے انوبھو سے سنتے ہیں تب تھوڑا سا جوڑنا مشکل ہے، لیکن جب وہ ہمیں خود آ کر انٹروڈکشن دیتا ہے تو اٹ از آلویز ایکوریٹ. اب وہ کیسے آ کر اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں وہ ہم پھر بھی دیکھیں گے آگے. بٹ اٹس ویری امپورٹینٹ کہ جو بھی سبھی بھائی بہنیں یہ سن رہے ہیں وہ یہ ایک اوپن مائنڈ سے یہ سارا سنیں کہ یہ ساری باتیں، ہر ایک بات جو ہم آپس میں ابھی یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ پرماتما کے سوئم اپنے دوارا دیا گیا پریچے ہے، جو پرماتما نے سوئم آ کر اپنی پہچان ہم سب بچوں کو دی ہے. کیونکہ ابھی تک پرماتما کے بارے میں بہت سارے کانسیپٹس ہیں، بہت ساری بلیف سسٹمز ہیں، جیسے پرکرتی ہی پرماتما ہے،
ایگزسٹنس یہ نیچر یہ یہ ہے، یہ کوئی پار ہے، یو نو لائک سم ویئر وین وی لک اپ رائٹ سے کہ اٹس لائک سم. جو لوگ مورتی پوجا میں وشواس نہیں بھی رکھتے، جو ایتھسٹ بھی مانے جاتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی پاور تو ہے.
وہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی ایک شکتی ہے، لیکن جب ہم پرکرتی کو ہی پرماتما مان لیتے ہیں، جل کو، سوریہ کو، سوریہ دیو، یو نو، جل کی پوجا کرنا، کسی ورکش کی پوجا کرنا، کسی پشو کی پوجا کرنا، یو نو، یہ سب جو ہے کہ ہم نے پرکرتی کو ہی پرماتما کا روپ دے کر پرکرتی کی ہی پوجا آرادھنا کرنی شروع کر دی. دوسری مانیتا ہے کہ آتما سو پرماتما
سو ہم،
سو ہم، ہم ہی وہ ہیں، وہ ہم ہیں. تو ایسی بہت ساری مانیتا ہیں، کن کن میں
بھگوان، ہر ईश्वर के सृष्टि के हर कण में भगवान है, मुझ में, तुझ में, सब में भगवान,
कच मच सब सब में, हर चीज के अंदर भगवान है. फिर भगवान निराकार है, वो नाम रूप से न्यारा है, वो कोई है ही नहीं, ना उसका नाम है, ना रूप है, ना कुछ, बट वो एक शक्ति है. फिर भगवान है ही नहीं.
हाँ,
ये भी तो एक कॉन्सेप्ट
भगवान
है, कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्रिएशन ऑफ मैन,
और इवोल्यूशन के थ्रू आदमी बना के
आत्माओं ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, یو نو، اپنے اس پورے سسٹم کو کنوینئنٹلی چلانے کے لیے ایک क्रिएशन कर दिया कि कोई एक शक्ति है, भगवान है, पर एक्चुअली भगवान तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है. इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इमेजिन.
एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम उसकी ही संतान हैं, यू नो, लाइक हम उनका एक अंश
है, और फिर हम जाकर उनके अंदर ही जाकर वापस,
हमें वहीं जुड़ना है.
हम उनसे टूटकर ही आए हैं और वापस उन्हीं में जाकर समा जाना.
ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये बिलीफ सिस्टम्स हैं अगेन. Are they right or not? Again, we
again there is no question of right or wrong.
Experience,
yes. It is a question of कि ये सारे जो belief systems हैं हमने अभी तक सुने हैं, पढ़े हैं, कोई भी wrong नहीं है. See again, कोई भी wrong नहीं है, लेकिन कई बार हम उसका सही meaning मिस आउट कर जाते हैं और उसको बहुत एक physical रूप में ले लेते हैं. उसके पीछे का जो भाव है, उसके पीछे जो message है, वो रह गया और उसको बहुत ही ग्रॉस फॉर्म में हम ले लेते हैं. जैसे हमने कहा, जितनों ने भी परमात्मा का परिचय दिया, कोई भी गलत नहीं था, लेकिन कोई भी 100% शायद.
आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, जो जितने भी ये संत या इवन हमारे उपनिषद या गीता का भी बात अगर मैं करती हूँ, तो यहाँ सब ईश्वर का परिचय दिया जा रहा है, क्या उन्हें भी ईश्वर ने ही परिचय दिया अपना, जैसा आज ईश्वर?
वो हम देखेंगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे कि ये सृष्टि में हम कैसे कैसे अपना रोल प्ले करते आए हैं. अच्छा. कब परमात्मा ने आकर अपना परिचय दिया और उसके बाद क्या हुआ और
कब,
अब क्या हो रहा है?
अच्छा, कब कब? कभी 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 कभी
नहीं, एक ही बार दिया, लेकिन जब दिया फिर वो मैसेज कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ, वील टेक दैट इन द कमिंग एपिसोड. बट वेरी इम्पोर्टेंट इज कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, इन पर इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. प्रकृति, नेचर, अभी तक हम कहते हैं कि गॉड इज द क्रिएटर और प्रकृति उसकी रचना है. फिर उसकी रचना को ही रचयिता कैसे हम मान सकते हैं? प्रकृति तो रचना है ना, इट इज द क्रिएशन, दिस होल सृष्टि, फिर उसको ही रचयिता कैसे मान सकते?
इफ आई मेक अ पेंटिंग,
या तो इट्स वेरी डिफरेंट. यू आर द आर्टिस्ट, दैट इज द पेंटिंग. जैसे एक वो यू नो कुम्हार है, वो एक बहुत सुंदर सा मटका बनाता है. उस मटके को देखकर हमें उसकी याद आ सकती है कि इसको बनाने वाला कौन. इसी तरह सृष्टि को देखकर, इस प्रकृति को देखकर हमें उसकी याद आ सकती है, लेकिन वो नहीं है. वो हम मिक्स नहीं कर सकते. फिर हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, मतलब आत्मा बच्चा है. एक तरफ हम कहते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है. तो बच्चा पिता के जैसा हो सकता है, यू नो, लेकिन बच्चा ही पिता बन जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है. हम कहते हैं कि हम ऐसे कुछ काम करें जो हम ही परमात्मा बन जाए. अब परमात्मा कोई ऑब्जेक्ट या कोई डिग्री थोड़ी है जिसको हमने प्राप्त कर लेना है. परमात्मा तो एक एंटिटी है, वो एग्जिस्ट करता है, तो हम वो बन कैसे सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि हम उसके जैसा बन सकते हैं,
उसके जैसे डेवलप वैसे हो जाए हमारा डेवलप.
जैसे एक बच्चा कहे कि मैं इतना श्रेष्ठ काम करूं कि मैं बिल्कुल अपने पिता जैसा बन जाऊं, लेकिन मैं अपना पिता बन जाऊं,
ये नहीं हो सकता. पिता तो पिता रहेगा,
वो किसी और रचना का पिता बन सकता है, लेकिन वो अपना ही पिता नहीं बन सकता. उसका पिता उसका अपना ही रहेगा. फिर जैसे आपने कहा कि उसमें से फ्रैगमेंट होकर कि परमात्मा का ही हम अंश है और परमात्मा में ही हम वापस समा जाएंगे. या जो हम कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, आप मानते हैं कण कण में परमात्मा?
सी, मुझे ये लगता है कि कण कण में परमात्मा मानने से एटलीस्ट मैं केयर कर लूंगी.
हाँ, कंसर्न बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से रहेंगे.
हाँ,
मेजोरिटी लोग आजकल ये अभी तक ये मानते हैं कि हरेक के अंदर परमात्मा है, और उसके पीछे भी कुछ भाव रहा होगा वो बात को मानने का. लेकिन अपने आप से पूछना होगा, इसमें हम बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं यूज करें. सबसे पहले अपने आप से पूछें, आप भी अपने आप को अभी पूछना कि डू आई रियली फील कि जो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो शांति का सागर है, जो प्रेम का सागर है, ओशन ऑफ प्योरिटी है, पवित्रता का सागर है, वो मेरे अंदर बैठा?
आई डोंट थिंक सो.
अगर वो मेरे अंदर बैठा है, तो व्हाट शुड बी माय फीलिंग्स?
आई शुड ऑलवेज फील यू नो एनलाइटन्ड, आई शुड ऑलवेज फील गुड.
अगर ओशन ऑफ पीस, शांति का सागर आपके अंदर बैठा है, तो क्या क्रोध आ सकता?
नहीं आ सकता ना,
आ नहीं सकता ना. दुख आ सकता है, चिंता हो सकती है. जो फीलिंग्स हमारी मेजोरिटी सारा दिन है आज, उसका एक ट्रेस भी नहीं हो सकता, बिकॉज द ओशन ऑफ दोज क्वालिटीज इज सिटिंग इनसाइड.
लेकिन वेन यू से कि अगर वो संस्कार हमारे मूल संस्कार जो थे वो भी यही जो थे उनके ऊपर धूल मिट्टी जमती गई, या इतने संस्कार
आत्मा के ऊपर धूल मिट्टी जमती गई, तो क्या मतलब परमात्मा पर भी धूल मिट्टी जमती गई?
नहीं, अगर वो आत्मा ही परमात्मा है, देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि कण कण में है, मुझ में तुझ में सब में है, वही परमात्मा है, परमात्मा का ही एक अंश हूं मैं. तो अगर मुझ में वो जो मेरी बेसिक जो आई एम दैट सोर्स, यू नो मैं थोड़ा छोटा हूं क्योंकि मैं यू नो लाइक सुप्रीम नहीं हूं, क्योंकि मुझे मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम सब मिल जाएंगे तो हम परमात्मा हो जाएंगे, यू नो लाइक द रियल बिग सेंस.
अब आप सोचो कि सारी जो आत्माएं हैं आज और ये सारी जितने वेरिड संस्कार कैरी कर रही हैं, क्रोध के, काम के, ईर्ष्या के, द्वेष के, ये सारे मिल के परमात्मा बन जाएंगे.
No, but then that has to be separated, ना जब हम उन वो जो गलत जो संस्कार आते हैं,
परमात्मा को आज हम याद करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं,
यही तो कन्फ्यूजन है.
अगर वो हमारे अंदर बैठा तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है. जब भी हमें उसकी याद आती है हमारी ऑटोमेटिकली नजर ऊपर जाती है, ऊपर वाला जाने अब क्या होने वाला, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर वाला है ही कौन? जब वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है तो फिर ऊपर वाला तो कोई है ही नहीं. हम बोले इधर उधर वाले सारे जाने, क्योंकि सबके अंदर बैठा है, मैं ही जानू, मेरे अंदर ही बैठा है.
एक्चुअली पता है मुझे ये लगता है जनरली ये देखा जाए अगर कि इतनी कंफ्यूजन है गॉड को लेके, इतनी कंफ्यूजन है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके कि जो जो जब समझ में आता है हम वो मान लेते हैं. जब हमें ये लगता है, जब हम सोच रहे होते हैं तो ये कहा जाता है कि मुझ में ही भगवान है. व्हेन आई वांट टू फील गुड आई फील ओके, मुझ में ही तो है गॉड, यू नो लाइक आई स्टार्ट फीलिंग गुड. व्हेन आई मेरे से काम नहीं हो पा रहा, कुछ चाहिए, देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, यू नो कि ओह नहीं तुम कहां
हो. ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वो कभी कभी आता है और कभी कभी चला
जाता है.
अगर इफ गॉड इज सी दैट्स व्हाट, हमें एक एक अपने बिलीफ को चेक करके ट्रू और फॉल्स करना पड़ेगा, राइट कि अगर गॉड इज इनसाइड मी तो वो मोमेंट आ ही नहीं सकता ना जो मैं परेशान हूं.
आई थिंक इट्स हाई टाइम यू नो वी स्टार्ट क्लेरिफाइंग,
राइट
वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग.
तो मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अगर परमात्मा मेरे अंदर बैठा है तो वो क्षण ही नहीं आ सकता.
जब कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन हो,
वो क्षण ही नहीं आ सकता कि जो मुझे दुख हो और परेशानी हो, सर्वशक्तिवान मेरे अंदर बैठा है. इवन जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन राइट नाउ सिटिंग हियर, अगर हम सब अपने आप से एक मिनट ये क्वेश्चन करें कि इफ रियली अगर सचमुच में सिर्फ एक क्षण के लिए, सारी उम्र के लिए नहीं, एक क्षण के लिए वो एवर प्योर, वो सर्वशक्तिवान, शांति का सागर एक क्षण के लिए भी मुझके अंदर आकर अगर बैठ जाए, हाउ वुड बी द फीलिंग?
It could be too good, too great actually. You know, it's the thing.
Yeah, so we won't even know what's the feeling because we've never experienced it.
Ultimately, बात यही आती है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सपीरियंस करने का ही है.
क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं पिता की संतान हूँ, तो इसलिए जो उसके गुण है वो सारे मेरे गुण है, इसलिए वो शांति का सागर है, तो मैं शांत स्वरूप हूँ. अब मैं उस पिता को याद भी करती हूँ, जैसे हमने देखा हम सब परमात्मा को याद करते हैं, तो मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण है, मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा की याद है. मैं आत्मा अपने पिता की तरह बन सकता हूँ, लेकिन वो पिता ही मेरे अंदर आकर बैठा है. दिस आई नीड टू एक्सप्लोर, क्योंकि अगर वो सारा दिन मेरे अंदर आकर बैठा है तो फिर तो मेरी स्थिति बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एंड जो दुनिया की स्थिति है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. जैसे सन है, सूर्य है, अब सूर्य की रोशनी तो
चारों
पूरी सृष्टि पर है, सूर्य तो एक ही है, उसको हर जगह तो नहीं प्रेजेंट होना पड़ता है अपनी लाइट और वार्म्थ देने के लिए, लेकिन वो एक पोजीशन से भी अपनी शक्ति उस किरणों के द्वारा हर तरफ फैला रहा है.
और हर चीज जो लाइट दे रही है वो सूरज नहीं है एक्चुअली.
यस एब्सोल्युटली. अब वो सूर्य की किरणें, सूर्य की लाइट एंड उसकी जो हीट एनर्जी है वो सब तक पहुंच रही है. जो जितना नजदीक होगा उसको उसका अनुभव ज्यादा होगा, लेकिन सूर्य हर जगह प्रेजेंट नहीं है. इसी तरह परमात्मा के गुण और शक्ति हर आत्मा में है. जो आत्मा जितना ज्यादा याद करेगी उसके अंदर वो गुण उतने ज्यादा दिखाई देंगे.
वो एहसास है एक्चुअली, यू नो
फीलिंग.
हाँ, फील, वी फील मोर सन, वी फील लेस सन, सिमिलर. ओके,
सेम थिंग. तो हम जितना प्यार से उस परमात्मा को याद करेंगे, जैसे हमने कई बार लगता, मुझे तो लगता है बस वो मेरे साथ ही है, यू नो, तो वो एक्चुअली फिजिकली नहीं मेरे साथ है, लेकिन मेरी याद इतनी स्ट्रांग है. जैसे मीरा इतनी स्ट्रांग भक्ति की, इतना उसको एक कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसने कहा मैं जहां भी देखूं मुझे तो तू ही तू दिखाई देता है, पर बाकियों को तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका वो भाव ये था, तो उसको हर जगह वो ही दिखाई देता है. तो परमात्मा अगर हम समझें कि हरेक के अंदर है, दिस इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ गिविंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन.
हाँ, कि मैं तो करी ना, मुझमें ईश्वर है, तो
तो मतलब जो भी गलत हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, उसकी जिम्मेवारी. मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो बैठकर करवा रहा है, तो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्मों की वो तो खत्म ही हो गई. और दूसरा, मुझे कुछ मेहनत करके कुछ अपने आप को परिवर्तन करना है, उसकी भी अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कंप्लीट हूँ, परमात्मा ही मेरे अंदर बैठा
है. अनदर एस्पेक्ट इज लेट एग्जिस्टेंस टेक इट्स ओन यू नो एक्शन. एक ये कॉन्सेप्ट कही है कि एग्जिस्टेंस जो है वो सुप्रीम है, जो भी एग्जिस्टेंस है, और उसके फ्लो में फ्लो करते जाओ. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू नो, डोंट ट्राई टू फाइट आउट व्हाट एग्जैक्टली,
बिकॉज एवरीथिंग इज नेचुरल. प्रकृति के नियमों अनुसार और आध्यात्मिकता के नियम अनुसार, जैसे एक लॉ ऑफ नेचर होता है और एक है स्पिरिचुअल लॉज, तो हर चीज जो चल रही है वो अपने स्पिरिचुअल लॉज के मुताबिक सब चल रही है. हमें उसके साथ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन रखना होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल लॉ, जैसे एक स्पिरिचुअल लॉ है, जो हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा. तो अब हमें जो मिल रहा है उसके साथ स्ट्रगल करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसी का रिजल्ट है जो हमने किया. सो नाउ टेक इट इजी, जस्ट फ्लो विद इट, बट साइड बाय साइड पे अटेंशन टू द नेक्स्ट एक्शन दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म, ताकि अब हमारे से कोई गलत कर्म नहीं हो जाए. तो एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस स्पिरिचुअल लॉज. तो ये भी जो एक मान्यता है ना कि भगवान हर चीज कंट्रोल कर रहा है, पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है. अब अगर भगवान की मर्जी से सृष्टि चले और भगवान की मर्जी से हम सब चलें, तो फिर हम सब कैसे होने चाहिए?
बेस्ट.
तो फिर अर्थक्वेक, सुनामी, वॉर, ये सब भगवान की मर्जी से तो हो नहीं सकता.
यू नो व्हेन पीपल क्राय कि मैं तुझे इतना याद करता हूँ, तब भी मेरे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है?
तो फिर अगर वो पिता है, हम बच्चे हैं, क्या उसकी मर्जी से हमें इतना दुख मिलेगा?
बट देन हु हैज क्रिएटेड दीज लॉज, यू नो, स्पिरिचुअल लॉज?
दीज आर इटर्नल लॉज. हु हैज क्रिएटेड द नेचर लॉज? दे आर इटर्नल लॉज. नोबडी क्रिएट्स अ लॉ, नेचर वर्क्स अकॉर्डिंग टू दोज लॉ. लॉ ऑफ ग्रेविटी किसी ने क्रिएट नहीं किया, इट वॉज ऑलवेज देयर. It's just that one day Newton realized it. But इसका मतलब ये नहीं कि law of gravity उस दिन create हुआ था. वो तो हमेशा से ही functional था. लेकिन जब हमें realize हो गया, तो हम उस law के अनुसार चल सकते हैं. हम उस law के against अगर जाएंगे, तो फिर हमारा नुकसान होता है. तो परमात्मा इस सृष्टि को control नहीं करता है. हम सब अपने कर्म अनुसार अपना भाग्य बनाते हैं. तो ये भी जो हम कहते हैं कि यू नो एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय हिम, ये भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश कर देते हैं कि सब कुछ तो वो ही कर रहा है. मेरे साथ अच्छा बुरा जो हो रहा है, वो बच्चा दिया तो भी उसने दिया, ले लिया तो भी उसने ले लिया, तो ब्लेम सारा उसी पर डाल देते हैं. एक पेरेंट अपने बच्चे को कभी दुख नहीं दे सकता. मनुष्य आत्मा भी अपने बच्चे को कभी दुख नहीं दे सकता. तो परमात्मा जो सुख का सागर है, जो कल्याणकारी है, वो अकल्याण कैसे कर सकता है? वो अपने बच्चे का अकल्याण नहीं कर सकता. लेकिन जैसे आप एक माँ हैं, आपकी दो डॉटर्स हैं, आप दोनों को शिक्षा देती हैं, आप दोनों के लिए अच्छा ही सोचती हैं, लेकिन फिर दोनों अपने अपने कर्म, आप कितना भी चाहें कि उनको दुख ना हो, आपके चाहने से वो नहीं
होगा. यू नो जो कुछ हो रहा है, लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ स्पिरिचुअल लॉ है, वट एवर, देन गॉड क्या कर सकता है?
गुड.
यू नो लाइक इफ इट हैज टू हैपन,
राइट,
वट एवर आई एम डूइंग,
परमात्मा क्या कर रहा है फिर? उसका क्या रोल है? एब्सोल्यूटली, परमात्मा का इस सारे सृष्टि के जो ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें परमात्मा का रोल क्या? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. क्योंकि हम परमात्मा को ही नहीं जानते, उसके गुणों को ही नहीं जानते, उसके कर्तव्य को भी नहीं जानते कि वो क्या एक्ट प्ले करता है, उसका क्या रोल है
कंट्रोलिंग आवर लाइफ और
बिकॉज इट इज सी अगेन नो लॉजिक बट इट इज समथिंग टू बी एक्सप्लोर्ड कि इफ गॉड वॉज कंट्रोलिंग आवर लाइफ वुड बी परफेक्ट इट नॉट बेटर इट वुड बी जस्ट परफेक्ट उसमें इतनी भी ट्रेस नहीं आ सकती दुख अशांति के. तो हमें परमात्मा के कर्तव्य को तो जानना ही है लेकिन उससे पहले उसको सही रूप से पहचानना है. और किसी को भी पहचानने के लिए हमें पहले उसका रूप जानना होगा. एक और मान्यता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है.
हाँ।
उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं
है, निराकार.
तो अगर कोई एग्जिस्टेंस है, अगर कोई एंटिटी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई फॉर्म नहीं. तो फॉर्मलेस नहीं हो सकता. क्वालिटीज फॉर्मलेस हो सकती हैं कि वो प्यार का सागर है, तो प्यार की कोई फॉर्म नहीं होती लेकिन उसकी तो फॉर्म है जिसकी प्यार वो क्वालिटी है. तो परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसका रूप है, नाम है. और उसको जानने के लिए हमें उसकी ये सारी बातें जाननी होंगी कि परमात्मा का रूप क्या है, उसका नाम क्या है, उसके गुण क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, वो रहता कहाँ है, और हम किस भाषा में उससे बात कर सकते हैं, और हमारा उसके साथ संबंध क्या है. ये सारी बातें हमें उसके बारे में जाननी होंगी. लेकिन उसके लिए हमें एक ओपन माइंड रख के ये सारे जो हमने आज बिलीव्स डिस्कस किए, पहले उन पर सोच ले और उनको फिर एक एक को थोड़ा सा किनारे रखें. कुछ एक समय के लिए थोड़ा सा किनारे रखें और कोई भी बिलीफ सिर्फ सुनकर बिलीव नहीं करें. इवन जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसको सुनकर नहीं मानना है, इसको वर्क करना है इसके ऊपर.
शिव ज्योति अलोकित.
मानती हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते को पे चलने को तैयार हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को कि अब आज शायद हम परिचित हो जाएं उस परमात्मा से, उस परमपिता से, जिसे हम कब से तलाश रहे हैं, हर जगह ढूंढा हमने, नहीं मिला। कौन है
परमात्मा? जैसे हमने पहले भी बताया कि परमात्मा स्वयं आकर इस सृष्टि पर इस समय अपना परिचय देते हैं। पहले उन्होंने हमें अपना परिचय दिया कि हे आत्मा तुम कौन हो, तो कितना सुंदर और सिंपल परिचय था कि आप एक शक्ति हैं जो इस शरीर को चलाते हैं। शक्ति का रूप क्या बताया, क्योंकि उसका कोई फिजिकल शेप नहीं हो सकता, लेकिन एक स्मॉलेस्ट फॉर्म जो था तो वो था पॉइंट ऑफ लाइट, कि आप अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा है। मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, परम आत्मा है, तो वो भी
आत्मा
आत्मा है ना, वो भी आत्मा ही है। जैसे एक कोई भी आप पशु ले लें, बच्चे का पिता, तो पिता कौन होगा? जैसा बच्चा वैसा ही वो। मनुष्य, मनुष्य का पिता, वो भी मनुष्य। आत्मा का पिता
परमात्मा,
तो वो भी आत्मा।
लाइट,
लाइट, राइट। तो मैं जैसे आत्मा हूँ तो वो परमात्मा है। परम क्यों है? वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा, लेकिन परम क्योंकि वो गुणों में शक्तियों में परम है। अभी आप देखो, जैसे गांधी जी, गांधी जी का नाम महात्मा गांधी नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा महान कर्तव्य किया जिसकी वजह से उनको कर्तव्य के आधार से टाइटल मिला महान आत्मा। तो महात्मा धर्म स्थापक आए सृष्टि पे, धर्म स्थापन किया, टाइटल मिला धर्म आत्मा। देव आत्मा है, जिनके अंदर दिव्य गुण थे, तो देवी देवता, देव आत्मा। पुण्य आत्मा, किसी किसी को पाप आत्मा भी। महान आत्मा, संत आत्मा। तो आत्मा की जो क्वालिटी है उस आधार पर उसको टाइटल मिलता, और इसी तरह परमात्मा। अब ये सारे जो आत्माएं हैं, तो ये कितने सारे होते हैं, कितने सारे महान आत्माएं, देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, लेकिन परमात्माएं
एक ही हो सकता।
तो हम कभी परमात्माएं नहीं कहते, परमात्मा हम हमेशा सिंगुलर भाव में कहते हैं कि ये सब आत्माएं परमात्मा एक। तो परमात्मा सबसे पहली बात तो वो एक है, और वो भी आत्मा है। तो जहां हम फॉर्म की बात करते हैं कि परमात्मा का रूप क्या है, क्योंकि जब तक हमारे सामने उसका रूप नहीं होगा ना, हम याद नहीं कर सकते,
बिल्कुल नहीं कर सकते।
आप कहो वो नाम रूप से न्यारा है, तो किसको याद करें? तो जैसे मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अ प्योर बींग, उसी तरह मेरा पिता, जस्ट ट्राई एंड लुक एट हिम बिकॉज यू कैन सी हिम। बुद्धि के नेत्र के द्वारा उसको देखने की कोशिश करो कि वो भी कैसा है, जस्ट लाइक मी, वो मेरा पिता है। तो जस्ट लाइक मी, बिल्कुल मेरी तरह, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति का स्वरूप है, प्रकाश पुंज है। सिर्फ फर्क क्या है, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। तो परम मतलब,
परम मीन्स प्योर,
प्योर। परम मीन्स हाइएस्ट, परम मीन्स सुप्रीम, सुप्रीम नॉट इन साइज। कई लोग कहते हैं मैं छोटी आत्मा हूँ, तो वो बड़ी आत्मा है,
छोटी सी लॉ हूँ वो बड़ी लॉ है। नो, अच्छा, द सेम सेम डॉट ऑफ लाइट,
लेकिन सुप्रीम इन व्हाट? सुप्रीम इन क्वालिटीज, सुप्रीम इन पावर, सुप्रीम इन हिज एक्ट। वो परम है अपने गुणों में, अपनी शक्तियों में। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वो शांति का सागर है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी, लेकिन वो पवित्रता का सागर है, तो इसलिए वो परम है, वो ऊंचे ते ऊंचा है।
लेकिन मैं एम्बॉडीमेंट हूँ क्योंकि मेरी बॉडी साथ जुड़ी है, यू नो,
एम्बॉडीमेंट मीन्स आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट वैल्यू, मतलब दैट इज माय वैल्यू। जैसे हमने पहले दिन भी देखा कि हमें शांति कहीं ढूंढनी नहीं है, आई एम दैट, दैट इज माय नेचर, दैट इज माय पर्सनैलिटी। तो वो है, आप सब रिलीजन्स को देख लीजिए, क्योंकि परमात्मा का वही स्वरूप स्वीकार होना चाहिए जिसको सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करें। ऐसे नहीं हो सकता कि हिंदूज के लिए परमात्मा अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, इट्स नॉट पॉसिबल। परमात्मा का कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करती है? सबसे पहले हिंदू धर्म में हम देखें तो जो सबसे पुराने मंदिर है वो कौन से है?
शिव,
शिव, शिव भी जब हम कहते हैं तो ज्योतिर्लिंगम, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम मठ है, उसकी सारी यात्रा करते हैं तो कहते हैं तीर्थ पूरा हुआ, और पूरे भारत वर्ष में, यहाँ तक के नेपाल में भी, हर जगह वो ज्योतिर्लिंगम है। तो किसका स्वरूप? ज्योतिर्लिंगम, लिंगम मीन्स सिंबल, ज्योति लाइट, सिंबल ऑफ लाइट, ज्योतिर्लिंगम। तो कहीं ना कहीं आत्मा ने जब सबसे पहला वो मंदिर बनाया तो उसके अंदर स्मृति तो थी कि परमात्मा एक ज्योति है, लेकिन ज्योति पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म,
एक ऑब्जेक्ट,
जस्ट अ लिटिल शेप, जस्ट अ लिटिल शेप। तो भारत में इतने सारे प्राचीन जो मंदिर है, सबसे पहले जो मंदिर है वो शिव, वो ज्योतिर्लिंगम के है, चाहे और जितने भी उन मंदिरों के नाम है वो सब परमात्मा के कर्तव्य पर आधारित है। अमरनाथ, सोमनाथ मतलब सोमरस हमें पिलाने वाला, हम आत्माओं को फिर से पतित से पावन बनाने वाला, विश्वनाथ जो विश्व का मालिक है, मुक्तेश्वर जो हमें भी मुक्ति दिलाने वाला है, बबुलनाथ जो कांटों को फिर से फूल बनाने वाला है, साउथ में अगर आप जाएं तो रामेश्वरम। अब रामेश्वरम में अगर हम जाते हैं मंदिर में तो वहां एक मान्यता है, अगेन बिलीफ है, कि श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापन कर तपस्या की शक्ति के लिए, ताकि वो विजय प्राप्त करें, मंदिर का नाम पड़ा रामेश्वरम, तो श्री राम के भी ईश्वर। गोपेश्वर, इसका मतलब गोप के भी ईश्वर। तो ये सारे जो मंदिरों के नाम है उस परमात्मा के कर्तव्य के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर रखे हैं। तो ये हुआ हिंदू रिलीजन। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है, वो किसी देहधारी को परमात्मा नहीं मानते, लेकिन जीवन में एक बार हज की यात्रा पर जरूर जाते हैं, और जब उस में प्रवेश करते हैं उस स्थान में, तो बाहर एक गोल आकार का या ओवल शेप्ड का पत्थर है जिसे संगे अश्वत कहते हैं, और उसे चूम कर ही अंदर जाते हैं, और ये मान्यता है कि वो उनके पापों को जैसे धो देगा। अंदर जाकर अपनी जब हज पूरी होनी होती है उससे पहले कहते हैं कि हे परवरदिगा, हे नूरे इलाही, मेरी हज कबूल करो। तो हे परवरदिगा, उस परमेश्वर को संबोधित करते हुए, हे नूरे इलाही, मतलब परमात्मा को भी उस लाइट नूर के रूप में याद किया, मेरी हज कबूल करो, और तब उनकी हज पूरी होती है। क्रिश्चियन धर्म, मोसेस जब उस माउंटेन पर गए जहां उनको 10 कमांडमेंट्स लिखी हुई मिली, उनको भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जीसस क्राइस्ट हमेशा उंगली ऊपर है, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, परमात्मा ज्योति है, मैं सिर्फ उसका दूत हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। गुरु नानक देव जी, एक ओंकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल मूरत, अजोनी, एक का परिचय। एक ओंकार निराकार है, उसका कोई साकार नहीं है, निर्वैर है, अकाल मूरत है, किसका परिचय? उंगली हमेशा ऊपर, कभी ये नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ। पारसी धर्म में भी हम देखें तो फायर टेम्पल, जहाँ ज्योति सदा जगती रहती है। तो जितने भी मुख्य धर्म है, इनफैक्ट सारे धर्मों को आप ले लो जो वर्तमान समय सृष्टि पर है, तो परमात्मा का ज्योति स्वरूप, दैट लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, ये सभी धर्म की आत्माएं मानती है।
तो एक ही रूप जिसे सभी धर्मों ने सच माना है, तो फिर इतने सारे रूप हर धर्म में हमें नजर आ जाते हैं, दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली, कि रियल परमात्मा है क्या।
जैसे हमने कहा कि हिंदू धर्म को देखें तो सबसे पहले रूप को शिवलिंग ही स्थापन किया हमने, तो हमें याद था कि परमात्मा वो ज्योतिर्स्वरूप है। तब हमारी शिवलिंग पर बुद्धि नहीं एकाग्र हुई, तो हमें फिजिकल फॉर्म चाहिए था। तो जो देवी देवताएं इस सृष्टि पर होकर गए हैं, देवी देवताएं मतलब दिव्य गुणों वाली आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, लेकिन वो परमात्मा नहीं, वो देव आत्माएं हैं, डिवाइन क्वालिटीज है। भारत के लिए गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं, तो 33 करोड़ देवी देवताएं, 33 करोड़ परमात्माएं
वो नहीं है, नहीं
है ना। जब नवरात्रि होते हैं तो हम कहते हैं हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, 9 परमात्माओं की पूजा करते हैं।
सो ये जो देवी देवताएं 33 करोड़ हमारे भारतीय, अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो 33 करोड़ देवी देवताएं वो आत्मा,
वो आत्मा थे जो संपूर्ण पवित्र थे,
पर वो थे मनुष्य के रूप में।
साकार रूप देखते हैं, तो वो थे, साकारी शरीर में थे, लेकिन वो संपूर्ण पवित्र थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे अंदर वो पवित्रता नहीं थी जो उनके अंदर थी, तो हमने किसको याद करना शुरू किया, उनको याद करना शुरू कर दिया। आज हम राजघाट पर जाते हैं तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और हम बहुत आदर से माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर ये इसी तरह चले 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष भी नहीं 50 वर्ष के अंदर अंदर क्या हो जाएगा,
हम उन्हें भगवान बना दें।
क्योंकि जैसे जैसे आत्मा और कमजोर होती जाएगी तो महात्मा गांधी जी ने जो कर्म किया अहिंसा के बल से फ्रीडम, ये तो एक इम्पॉसिबल काम लगेगा उस टाइम, क्योंकि उस समय आत्मा में वो बल ही नहीं होगा, तो वो एक मिरेकल हो जाएगा। और उन्होंने वो मिरेकल करके दिखाया तो हम उनको पदवी दे देंगे उस परमात्मा के। आज भी आप देखो कितने सारे फिल्म स्टार्स, कितने सारे पॉलिटिशियंस के अभी से मंदिर बन चुके हैं, जो अभी साकार में है उनकी अभी से हम पूजा कर रहे हैं। अब हमें सबको पता है कि महात्मा गांधी जी हमारे तरह ही मनुष्य थे जिसने श्रेष्ठ कर्म किए, लेकिन जेनरेशंस डाउन द लाइन क्योंकि उन्होंने वो मिरेकल करके
डिप्लीट होता जाएगा और
तो हम उनको परमात्मा मानेंगे। इसी तरह जो दिव्य गुणों वाली आत्माएं थी वो इतनी प्योर थी, आज हमें अपने अंदर वो प्योरिटी नहीं दिखाई देती है तो हम समझते हैं कि वो तो कुछ बहुत श्रेष्ठ थे और वो बहुत अच्छी बात है उनको याद करना, उनको नमन करना, लेकिन अंतर को समझना पड़ेगा कि वो देवी देवताएं हैं, वो परमात्मा है। इसलिए श्री राम जी को भी दिखाया कि वो शिव की स्थापना कर तपस्या कर रहे थे, ये मान्यता है कि वो ऐसा कर रहे थे, तो मतलब श्री राम जी ने भी तो उस ज्योतिर्लिंगम को अपने से ऊंचा माना। हम श्री राम जी को आज याद करते हैं जो ठीक है क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उन्होंने जिनको याद किया
ना वो सर्वश्रेष्ठ है,
उनको भी तो हमें याद करना है।
यहाँ एक और बात मैं जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं हमारे इष्ट है, हमारे श्री राम या
हमारे इष्ट
इष्ट है विष्णु,
हमारे कुल देव भी है।
हाँ,
जब हम कभी
कुल देवी,
कुल देवी है, कुल देवी देवता मतलब क्यों हम कहते हैं, जब भी कोई हवन होता है घर में तो पंडित जी आते कहते आपके कुल देवता कौन है, तो कुल देवता मतलब हम उनके कुल के हैं,
वो वंशज चले जा आ रहे हैं,
वो एंसेस्टर्स हैं हमारे, हम उनके कुल के हैं, तो इसीलिए हरेक के पास अलग अलग नाम है, लेकिन हम उनके कुल के हैं मतलब वो हमारे ही पूर्वज हैं, तो हमारे ही पूर्वज हैं मतलब मनुष्य आत्मा
वो मिराकल्स कर पाते थे एक्चुअली,
वो प्योरिटी थे उनके अंदर।
नो नो नाउ आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि जैसे महात्मा गांधी ने ये कर दिखाया वो आने वाले वक्त में मिराकल लगेगा,
मिराकल लगेगा।
इसीलिए जो
श्री साई बाबा हीलिंग पावर, आत्मा बहुत पवित्र थी, थॉट पावर बहुत क्लीन थी, तो हीलिंग पावर थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं, वो आम इंसान की तरह सब इंसानों की तरह ही रहते, क्योंकि ये तो अभी बहुत रीसेंट पास्ट में गए हैं ना, लेकिन हीलिंग पावर थी तो मिरेकल हुआ, तो हीलिंग पावर थी मिरेकल हुआ, तो आज हमने उनको दर्जा दिया कि वो भगवान है। तो ये सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर है, कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड, बट देन सो आर ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। लेकिन वो जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे वो हमने देखा तो हमें क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन है। उन्होंने भी कहा टू रिमेम्बर हिम, लेकिन हमें नहीं पता वो किसका परिचय दे रहे थे, तो हमने किसको याद करना शुरू कर दिया,
बिकॉज हमारे लिए वो गॉड।
नाउ दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है एक है, सबने उनको याद किया, बाकी सब धर्म आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, उन सबने उसको याद किया, लेकिन उसका परिचय न होने के कारण हमने उन सबको याद करना शुरू कर दिया। वो गलत नहीं है अगेन, क्योंकि वो बहुत दिव्य है, बहुत पवित्र है, उनको तो याद करें, लेकिन साथ साथ चार्जिंग कहां से होगी, हम सब बैटरीज है,
लेकिन जब हम जानते ही नहीं उनको।
हाँ, ये तो और अब देखो फिर तो हमने देवी देवताओं को याद किया,
तो उनके साथ तो हमें कई सारी कहानियों के रूप में हम जुड़ते गए उनके साथ, रामायण है, महाभारत है, कई और ऐसे सारे सबके साथ जो है, तो हमारी वो एक जुड़ाव है, हम पहचानते हैं उनको।
अब अगर आप देखें ना, जैसे हमने शुरू में ही बात की कि हम 10 मिनट याद करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई इष्ट देव की मूर्ति सामने रखते हैं या जो भी फॉर्म, पर उस पर भी बुद्धि
नहीं टिकती,
एकाग्र नहीं होती। तो अब आत्मा इतनी कमजोर हो गई है इस समय पर कि उस फॉर्म पर भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, तो हमने एक्चुअल लिविंग ह्यूमन बीइंग्स उनको ही परमात्मा का दर्जा दे दिया है,
ताकि कहीं कम्युनिकेट रिश्ता तो बने,
कहीं तो कुछ बने। वी आर लुकिंग फॉर दैट रिलेशनशिप विद गॉड, और वो हमें परमात्मा से नहीं मिला क्योंकि हम पहचानते नहीं थे। देवी देवताओं पर भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती क्योंकि वो सामने नहीं है। तो हमने कहा कि वर्तमान समय जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यू नो, जो परमात्मा को जानती है या पहचानती है या उस यात्रा पर है, हमने उनको ही परमात्मा का दर्जा दे दिया। वो तो बच्चे हैं, तो हम उनकी ही पूजा करने लग गए, उनको ही याद करने लग गए। अब उनको याद करने से प्राप्ति तो होगी, देवी देवताओं को याद करने से भी प्राप्ति होगी, लेकिन कितनी देर। और इसीलिए कहते हैं हम मंदिर में जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भावना है, वो श्रेष्ठ संकल्प से जाते हैं, लेकिन फिर बाहर आने के बाद
जो कॉन्स्टेंट, जो एक
कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो हमारे किसी सर्कल में नहीं आया, क्योंकि वो रिलेशनशिप का अनुभव नहीं हो रहा है। तो वो हमें एक्सपीरियंस करना है। ये सब आत्माएं हैं, तो ये सब हो गए हमारे
हमारे साथ की आत्माएं,
है ना, ये पिता नहीं है इनमें से कोई भी। तो मुझे वो जो शक्ति मिलनी है, मुझे वो जो प्योरिटी का वर्षा मिलना है, विच इज माई प्रॉपर्टी, माई बर्थ राइट, दैट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम द फादर, नॉट फ्रॉम द ब्रदर्स।
दे आर लाइक मी,
यस, दे आर ऑल सोल्स, दे आर प्योर सोल्स, डिवाइन सोल्स, बट दे आर सोल्स।
यहां तक तो मैं पहुंच सकता हूँ, यू नो, वेन वी से कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, बेसिकली आई कैन रीच अप टू दीज लेवल,
राइट, बट नाउ वी वॉन्ट टू रीच टू द सुप्रीम, वी वॉन्ट टू रीच टू द वन, वी डोंट वॉन्ट टू ओनली रिमेन विद द वंस हू गॉट हिज मैसेज, दे आर वेरी प्योर बट दे कनेक्टेड टू हिम, वाई कैंट आई कनेक्ट टू हिम ऑल्सो। इट्स बैटरीज, वी आर ऑल बैटरी, आज बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो अभी हम पावर हाउस तक नहीं पहुंच सकते, तो हम किसी और बैटरी के साथ उसको जोड़ देते हैं, तो चार्जिंग तो हो जाती है, कितनी देर के,
थोड़ी देर
चार्ज होती है, फिर हमें लेकर जाना पड़ता है उसको। फिर पावर हाउस से जब कनेक्शन जुड़ेगा, देन द चार्जिंग इज लॉन्ग टर्म। सो बैटरीज से कनेक्ट हो रही थी, और वो चार्जिंग कितनी हो रही थी डिपेंडिंग ऑन वो बैटरी कितनी चार्ज थी,
और कौन सी, हाँ बिल्कुल, किस बैटरी तक हम गए थे,
राइट। लेकिन अब हमें अगर रियली चार्ज करना है, तो हमें उस पावर सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज्ड,
व्हिच यू से इज पॉसिबल,
दैट इज मेडिटेशन, दैट इज ओनली मेडिटेशन, द सोल कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सोल एंड गेटिंग चार्ज्ड। सी, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर सोर्स टू अ लोअर सोर्स। तो मैं आत्मा जब उस परमात्मा के इतने समीप जाके बैठ जाऊं, ही इज अ हायर सोर्स ऑफ दोज क्वालिटीज, इट विल जस्ट फ्लो, दैट इज मेडिटेशन। तो वो जब फ्लो करेगी, तो वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर भी
आती जाएंगे,
इमर्ज हो जाएगी। तो इसलिए मुझे उस परम सत्य की पहचान बहुत जरूरी है। तो परमात्मा का वो ज्योति स्वरूप, निराकार लेकिन ज्योति स्वरूप, वो शक्ति रूप, वो सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करते हैं। दूसरा, परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वश्रेष्ठ है, उनके ऊपर और कोई नहीं हो सकता। अब अगर परमात्मा कोई देहधारी है, अ ह्यूमन बीइंग, तो किसी भी देहधारी के ऊपर उसके अपने माता पिता, अपने टीचर, अपना शिक्षक, अपना गुरु होता है। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं इन सबसे ऊंचा हूं, वो कहेगा मुझे ऐसे बनाने वाले
ये सब।
तो अगर परमात्मा कोई देहधारी है, तो उनसे ऊपर हो गए, तो फिर तो वो परमात्मा हो गए। परमात्मा, तीसरी बात ये, परमात्मा वो शक्ति हो सकती है जो सभी चक्रों से न्यारा है, ताकि हमें भी वो उन चक्रों से निकाल सकता है। हम परमात्मा को याद करते हैं कि हमें सब चक्रों से अब छुड़ाओ, अब हम थक चुके हैं। चक्र कौन से? जन्म, मृत्यु, कर्म, फल, दुख, सुख, ये सारे चक्र में हम हैं। अब उसे हमें इस चक्र व्यू से बाहर निकालना है। अगर परमात्मा कोई देहधारी है, तो जिसने एक बार देह ली,
वो छोड़ेगा भी।
देह ली तो कर्म करेगा भी, कर्म करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा भी, तो वो खुद उस चक्र में आ गया। तो जो खुद उस चक्र में आ गया, तो वो मुझे उस चक्र से नहीं निकाल सकता है। और परमात्मा वो जो गुणों में अनंत है, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो सभी आत्माओं को उसके वो गुण अनुभव हो सकते हैं। अगर वो कोई शरीरधारी है तो वो कितनी आत्माओं तक वो प्राप्ति दे सकता है? सारे विश्व को? आज 700 करोड़ आत्मा है तो सारी आत्माओं को वो शक्ति कोई भी शरीरधारी नहीं दे सकता।
He has to be sun actually.
Absolutely, he is the sun. He is the sun. Absolutely, he is the sun. लेकिन जैसे वो सन हमें लाइट और हीट देता है, तो ये सन भी हमें लाइट देता है, लाइट ऑफ नॉलेज, ज्ञान सूर्य। इसलिए हम परमात्मा को कहते हैं वो ज्ञान सूर्य है, वो हमें लाइट ऑफ नॉलेज देता है, हमें माइट देता है। तो ये तो हुआ परमात्मा का रूप। अब अगर रूप है तो नाम भी होगा, ये तो हम उसको याद कैसे करेंगे?
परमात्मा बोलते तो है हम परमात्मा।
परमात्मा तो टाइटल है ना।
अच्छा,
परमात्मा तो वो टाइटल है, जैसे मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा को फिर संबोधित करने के लिए एक नाम भी तो है। तो परमात्मा जब स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं तो वो अपना नाम भी बताते हैं।
और क्या नाम है?
जो वो, क्योंकि जैसे हम आत्माओं के नाम तो हमारे माता पिता ने रखे, तो हमें जो उनको नाम पसंद आया वो उन्होंने रख दिया। वो जरूरी नहीं है वो नाम हमारी पर्सनालिटी के साथ मैच करे, लेकिन परमात्मा का जो नाम है वो उनके गुणों के आधार से है। जो उनके गुण है, जो उनके कर्तव्य है, जो स्वरूप है, उस आधार से उनका नाम है। तो परमात्मा का स्वयं जो घोषित किया हुआ नाम है कि परमात्मा का नाम है शिव।
शिव,
शिव, शिव क्यों? शिव क्योंकि शिव का अर्थ है बीज, द सीड ऑफ नॉलेज। उसके अंदर सारी सृष्टि की नॉलेज है। शिव अर्थात शांति, पीस, एंड शिव अर्थात कल्याणकारी। वो कभी किसी का अकल्याण नहीं कर सकता है, तो उसका नाम है शिव। ये कोई, जब हम शिव कहते हैं तो इसको किसी रिलीजन के साथ न जोड़ा जाए, क्योंकि हिंदूज में हम शिव शंकर जैसे मानकर याद करते हैं, लेकिन जब हम शिव कहते हैं तो शिव उस परमात्मा ज्योति स्वरूप का स्वयं घोषित किया नाम है। तब हम शंकर जी की देव जो मूर्ति है उसके साथ उसको नहीं कंफ्यूज करें। शंकर जी वो देवता है, ये शिव अर्थात वो ज्योति स्वरूप। और क्योंकि वो मेरा पिता है, अब मैं उसको नाम से तो नहीं पुकार सकती, तो ये हमारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन क्योंकि वो मेरा पिता है तो मैं उसको नाम से नहीं पुकारती। तो वो मेरा पापा है, डैडी है, जैसे हम पापा को ऐसे बोलते हैं, तो हम परमात्मा को बाबा कहकर बोलते हैं। बाबा मतलब माय फादर। तो वो बाबा है, उसका नाम शिव है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम शिव बाबा कहकर याद करते हैं। तो देन जैसे मैं बाबा शब्द कहती हूँ
मैं जुड़ जाती हूँ एक्चुअली।
तो जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो जैसे, क्योंकि कईयों ने ये सुना होता है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा कोई देहधारी नहीं, वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, लेकिन वो मेरा पिता है इसलिए मैं उसे बाबा कहती हूँ। और उसका नाम शिव है तो शिव बाबा कहते हैं। अब उसको कैसे याद करना है वो फिर हम देखेंगे।
मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्ति दाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्ति दाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भव सागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार तेरे परम पिता परमात्मा
कहाँ है वो हमने मिल तो लिए हम मिल लिए उनसे ये भी जान लिया कि वो कौन है पहचानने की कोशिश की पर वो रहते कहाँ है कहाँ ढूंढे
जब भी हम दुखी होते हैं परेशान होते हैं तो स्वाभाविक रीति से नजर कहाँ जाती है ऊपर की तरफ है ना बस अभी कभी कहेंगे बस अभी थक गया बस
कहां
अभी
कहाँ हो तुम
वेयर आर यू ना यू शुड थिंक दैट क्यों हमारी नजर ऊपर जाती है हमें कोई कुछ भी नहीं पता कि ऊपर क्या है ना हमें किसी ने बताया कि ऊपर कुछ है लेकिन स्वाभाविक दिस इज वाई वी से कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द सोल तो स्वाभाविक नीति से नजर ऊपर जाती है क्योंकि वही वो घर है जहां से हम आए हैं
कहीं मेरी याद में रचा बसा है
हाँ क्योंकि हम उस घर से आए ना सो अ मेमोरी इज देयर अब किसी के अंदर वो मेमोरी क्लियर होगी और किसी के अंदर वो बिल्कुल फेंट है लेकिन एक बार हम वहां से आए हैं तो उसकी मेमोरी
हमारे साथ है
एब्सोल्युटली इनग्रेन्ड है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला या सब देखेगा उसी को मतलब ऑटोमेटिकली नजर उसकी तरफ जाती है तो जैसे ये जो दुनिया है जिसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड दिस इज आवर फिजिकल वर्ल्ड इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मैटर इट इज अ वर्ल्ड ऑफ साइंसेज इट इज अ वर्ल्ड टाइम एंड स्पेस यू नो ये लिमिटेड है एवरीथिंग इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस ये एक ऐसी दुनिया है जहां आवाज है जहां मूवमेंट है हलचल है जहां रिलेशनशिप्स है जहां नॉइज है ये सब कुछ है वो ये दुनिया है जिसको हम स्थूल तन कहते हैं कॉर्पोरियल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड जहां हम कॉर्प्स में है
ह्यूमन बीइंग्स हैं
हाँ हम बीइंग हैं लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में है तो हम कॉर्पोरियल वर्ल्ड या स्थूल वतन में हैं लेकिन इस शरीर को लेने से पहले भी तो हम कहीं थे ना यहां आकर हमने शरीर धारण किया लेकिन इस शरीर को लेने से पहले हम कहां थे तो परमात्मा आकर ही हमें उस घर का परिचय देते हैं जैसे हमें अपना दिया फिर अपना दिया परमात्मा ने फिर उस घर का भी दिया कि इस दुनिया से पार चांद सितारों की भी दुनिया से पार बियॉन्ड ऑल दिस स्पेस दैट वी कैन सी देयर इज अनदर वर्ल्ड अ वर्ल्ड इन द सेंस इट इज जस्ट अ रीजन एक्चुअली यू कैन नॉट कॉल इट इट्स अ वर्ल्ड बट इट्स बेसिकली अ रीजन इट इज एन एरिया विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस जहां सिर्फ प्रकाश है इट्स जस्ट रेड लाइट जस्ट गोल्डन रेड लाइट एंड दैट इज द लैंड
दैट इज वेयर वी
हैव यस एब्सोल्युटली
ओके
एंड दैट इज द लैंड वे बी ऑल स्टेड जहां परमात्मा भी निवास करते हैं और जहां हर आत्मा भी निवास करती थी इस सृष्टि पर आने से पहले इट इज अ लैंड ऑफ कंप्लीट साइलेंस एब्सोल्यूट स्टिलनेस स्थिरता क्यों स्थिरता नहीं क्योंकि वहां कोई संकल्प नहीं चलेगा
कोई थॉट नहीं
ये नॉइज तो नहीं होगी
क्योंकि बॉडी
ये तो बॉडी नहीं है लेकिन जैसे अभी हम यहां बैठे हैं बहुत लोग बैठे हैं या हम अकेले भी हैं भले हम किसी से बात नहीं कर रहे लेकिन एक नॉइज अंदर चलती है थॉट्स लेकिन वो जो धाम है जिसको हम परम धाम कहते हैं क्योंकि वो परम ऊंचे से ऊंचा धाम है वो परमात्मा का रहने का भी धाम है तो परम धाम कहते हैं वहां कोई आवाज नहीं संकल्पों की भी आवाज नहीं इट्स अ थॉटलेस स्टेज जहां आत्मा इज नॉट डूइंग एनीथिंग
इट्स जस्ट देयर
अ बीइंग जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन प्लस बींग, यहां आकर हम ह्यूमन डूइंग हो जाते हैं. आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, व्हाट एम आई बींग, वेयर आई एम इन दैट जस्ट कॉन्शियंट बींग.
आई
एम जस्ट एब्सोल्युटली स्टिल. एक लाइट के अंदर एक लाइट सस्पेंडेड है, जैसे यू कैन सी इट्स लाइक स्टार. ये हम देख रहे हैं ना इतने सारे स्टार्स. इट्स अ रीजन लाइक वास्ट एक्सपेंस, नो टाइम नो स्पेस, एंड उसमें ये स्टार्स सस्पेंडेड है. अपने अपने टाइम पे फिर
नीचे उतरते
इस सृष्टि पर आते हैं. तो मैं आत्मा उस एब्सोल्यूट स्टिलनेस और एब्सोल्यूट साइलेंस, और इसीलिए हर आत्मा उस शांति को तलाशती है. और जब भी अशांत होते हैं तो हमें वो घर बहुत याद आता है, क्योंकि उस घर में कोई थॉट नहीं था, तो बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल साइलेंस. एंड वहां परमात्मा भी रहता है, वो भी एक ज्योति बिंदु, एंड मैं आत्मा भी एक ज्योति बिंदु. तो उसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं. ये है फिजिकल वर्ल्ड और वो है सोल वर्ल्ड, आत्माओं का रहने का स्थान. अलग अलग नाम से उसको याद किया गया है. परम धाम, शांति धाम, क्योंकि वहां शांति है. मुक्ति धाम, क्योंकि हम इस शरीर के कर्म बंधन से मुक्त है. निर्वाण धाम, वाणी से परे है. तो इन सब अलग अलग नामों से उसको याद किया गया है. वो उस परमात्मा का रहने का स्थान है और हम आत्माएं भी वहीं रहते. अब आप देखो, जब हम वहां थे तो ये स्मृति हमारे अंदर थी, परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी वैसी, ये मेरा घर, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्डेड है.
तो हर बार व्हेन आई टेक अनदर बॉडी, यू नो, व्हेन आई मूव आउट फ्रॉम दिस बॉडी एंड टेक अनदर बॉडी, आई इन बिटवीन गो देयर.
नहीं, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन हम बीच में घर नहीं जाते हैं. इट्स लाइक वो घर है और ये हमारा कर्म क्षेत्र है, वर्ल्ड स्टेज. वहां से हम आए हैं कर्म करने के लिए, और काफी समय तक हम इस सृष्टि पर रहकर ही इस कर्म क्षेत्र में पाथ प्ले करते हैं. फिर एक समय आता है जब हम थोड़ी देर के लिए फिर से घर जाते हैं और फिर वापस आकर वो सृष्टि रंगमंच वापस स्टार्ट होता है.
बिकॉज वी हैव कम फॉर अ पर्पस.
या दिस इज लाइक आवर वर्क, दिस इज आवर वर्क प्लेस, वो हमारा घर है. तो एक बार आप घर से ऑफिस आते हो तो 8-10 घंटे के लिए आते हो ना. आप ये नहीं करोगे कि हर एक घंटे के बाद घर जाना है बीच में. तो आप 8-10 घंटे के लिए आते हो, शाम को 8 बजे के करीब आप थोड़ी देर के लिए घर जाते हो सिर्फ रेस्ट करने के लिए. लेकिन वो घर जाने से आप रिफ्रेश होके, रेस्ट होके, रिचार्ज्ड होके वापस नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हो. तो सेम थिंग, ये हमारा वर्क एरिया है, वो हमारा घर है. थोड़ी देर के लिए जाएंगे रेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर ज्यादा समय इस वर्क प्लेस पे बिताते हैं. लेकिन अब क्या हो रहा है कि कर्म करते 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 हम बहुत थक गए हैं. तो अगर बीच बीच में हम कुछ क्षण निकाल के सिर्फ मन से, बुद्धि से, आत्मा निकल कर नहीं जाएगी, लेकिन मन और बुद्धि से जब उस घर में चले जाते हैं ना और उस पिता के पास चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहां बैठे बैठे भी हम वो रिफ्रेशमेंट अनुभव कर सकते हैं. जैसे अब आप बैठो और 2 मिनट के लिए अपने घर को याद करो. जस्ट गो होम फ्रॉम हियर. Go home and be with your family. You will actually feel कि आप जाकर वो experience करके वापस आ गए. So it will give you that feeling.
Happiness, you know, yeah. That's that comfort that level. Yeah.
That comfort. क्योंकि घर मतलब comfort. घर मतलब protection. घर मतलब वो पिता की security. तो वो घर मतलब वो purity. तो इसलिए हम meditation मतलब वो घर जाना, उस पिता के मिलना, उससे बातें करना, फिर वापस आ जाना. कैसे करना? बुद्धि से. वो फिर हम मेडिटेशन में सीखेंगे. तो ये है कि परम धाम कहाँ हम पिता को याद करें, क्योंकि जब तक हमें उसका घर नहीं पता होगा तब भी याद करना बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ पे है, कहाँ हम उससे मिलने जाएं. तो हमने परमात्मा का रूप देखा, उसका नाम देखा कि हम उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं. फिर उसका घर देखा, लैंग्वेज हम किस भाषा में उससे कम्युनिकेट करें, थॉट्स संकल्पों के आधार से कम्युनिकेट करते हैं, और संबंध हमारा उसके साथ जो संबंध बनाना चाहे वो बना सकते हैं. वो भी हम मेडिटेशन में देखेंगे. हम परमात्मा के साथ कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं.
एक्चुअली यू नो वी कैन, माय गॉड, इफ वी हैव हिम, सी लाइक कितनी राइटर्स ने कितनी बार ये कहेगी कि अगर मुझे भगवान मिल जाए, अगर मुझे खुदा मिल जाए, तो मैं ये कहूंगा. सो नाउ लाइक इफ
एब्सोल्युटली और उसके गुणों को तो हम जानते हैं, तो किसी को भी याद करना होता है तो क्या क्या चाहिए, उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसका कर्तव्य। आपने कहा था ना एक्ट ऑफ गॉड, कि हम सब यहाँ कर्म क्षेत्र पे हैं, तो उसका रोल क्या है, वो क्या कर रहा है। तो वो अपने परम धाम में बैठा है, वो अपने घर में बैठा है। पूरे हमारे इस ड्रामा के दौरान वो हमारे ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता है। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आप फिफ्थ फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, आपके बच्चे ने ऊपर से नीचे झांक कर देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं, तो कहता है मुझे भी नीचे खेलने जाना है। आप कहते हो नीचे देख लेना, मतलब चोट लगेगी, दर्द होगा, नहीं मुझे नीचे खेलने जाना है, तो आप उसको भेज देते हो। दो तीन घंटा वो बहुत अच्छी तरह से खेलता है, लेकिन फिर उसको थक जाता है, चोट लगने लगती है, चीटिंग भी बहुत होती है, नीचे रोने भी वो लगता है। अब ये सब थोड़ी देर तो चलता रहता है, जब वो बहुत अति में पहुंच जाता है रोने के, कष्ट के,
तब आप पहुंच जाते,
तब वो एक बार आपकी तरफ देखता है ऊपर सिर्फ, और सिर्फ एक बार बोलता है कि प्लीज मुझे आके यहाँ से ले जाओ। आप दौड़ते हुए नीचे जाएंगे, उसको उठाएंगे और ऊपर ले आएंगे, उसको हील करेंगे, सफाई करेंगे, चुप कराएंगे, सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट डे
हील डू द सेम,
नेक्स्ट डे अगेन ही विल से आई वॉन्ट टू गो होम। सो दैट इज नो शिव बाबाज रोल इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। वो हम नीचे आ जाते हैं खेलने के लिए, कुछ समय बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, इट्स अ गुड गेम, बहुत मजा आता है सारा कुछ करते हुए, लेकिन बहुत समय हो गया ना करते करते, तो बीच में से दुख अशांति ये शुरू हो गई थी, चीटिंग भी शुरू हो गई, एक दूसरे के साथ रोना भी आया, हम बीच बीच में उसकी तरफ देखते भी गए, उसने कहा खेल ले थोड़ी देर और, लेकिन जब हमारी जो दुख थे वो बहुत अति में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल हम जैसे कि बहुत जोर से चिल्ला पड़ते हैं कि बस अब हमारे से और सहन नहीं होगा, अब हमें बस मुक्ति चाहिए इससे। दैट इज द टाइम व्हेन ही हैज टू कम डाउन, और वो उस समय पर आ जाता है, नीचे आता है, एक एक बच्चे को फिर उठाता है, उसके सारे जो घाव है ना उस पे मरहम लगाता है।
आई थिंक नाउ द टाइम हैज कम, एक्चुअली आई फील लाइक क्राइंग, यू नो, बिकॉज़ इट्स टाइम नाउ।
यस, इट इज दैट टाइम, इट ही शुड नॉट कम, ही हैज ऑलरेडी कम। परमात्मा आ चुका है, वही तो ये कार्य कर रहा है, वही तो हमें बता रहा है। मेडिटेशन है क्या, उसको याद करते हैं प्यार से, वो हमारे एक एक घाव को भर देता है, एक एक चोट को हटा देता है, फिर हमें फिर ठीक करके घर ले जाएगा, और फिर थोड़े दिन के बाद हम कहेंगे हमें फिर नीचे आना है। तो कई लोग जैसे कहते हैं ना बस मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, वी डोंट वॉन्ट टू कम इन टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बट इट डजेंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि द नेचर ऑफ द सोल इज कर्म। यू नो, हम घर जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्योंकि जस्ट इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग ना, इट्स अ लिटिल बोरिंग एक्चुअली,
स्टिल है ना,
स्टिल है, तो वो उसके जो सारी क्वालिटीज वो उसको यूज नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो वो सिर्फ जब हम बॉडी में आते हैं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं तो देर इज नो एक्सप्रेशन, देर इज नो एक्सपीरियंस, ना हम अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना हम कुछ अनुभव कर सकते हैं, वी जस्ट स्टिल। लेकिन शिव बाबा में और हमारे में क्या अंतर है कि हम शरीर लेते हैं, शरीर लेने से धीरे 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 हम अपनी अवेयरनेस को ही खो गए कि मैं कौन हूँ, जो हमने कहा ईगो आ गई, क्योंकि वी फॉरगॉट कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो शरीर नहीं लिया, तो वो उस शरीर से, उस साकारी दुनिया से न्यारा है, तो उसको कभी वो अपना ओरिजिनल स्वरूप भूला नहीं, और इसलिए उसकी क्वालिटीज में कभी
डिप्लीशन नहीं हुआ, कोई कमी नहीं,
और हमारे उसमें हो गई क्योंकि हमने शरीर लिया, हम उसकी अवेयरनेस भूल गए अपनी, और फिर हम वर्च्यूज की बजाय वाइसेस की तरफ, विकारों की तरफ।
नो, बट एक्चुअली दैट एस्पेक्ट इज सो गुड, यू नो, दैट वी रियली नीड, वी आर ऑल क्राइंग, वी नीड हीलिंग।
एब्सोल्युटली, तो परमात्मा उसी टाइम पर आता है जब हम सब की कलेक्टिव आवाज इतनी ऊंची हो जाती है, हमारे दुख इतने बढ़ जाते हैं कि त्राही त्राही मच जाती है, और सच में इस समय त्राही त्राही मची है कि पिता अब बच्चों का दुख नहीं और नहीं देख सकता, तो वही ड्रामा के अनुसार उसका भी रोल है नीचे आने का। क्या करना है, ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों को वापस रिस्टोर कर देना है अपनी पीस और प्योरिटी की तरफ, और उसमें क्या करना है, उसको कोई मिरेकल नहीं करना है। लोग कहते हैं भगवान आया तो फिर कोई मिरेकल हो जाए, सारी दुनिया परिवर्तन हो जाए। इफ वी लुक एट द वर्ल्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल, व्हाटएवर द केओस इज देयर, It's all because of the chaos in the
mind,
in the soul. अगर soul restore हो जाए तो world अपने आप restore हो जाएगा. तो God's role is to restore that peace and harmony in the world. कि ये जो सारा chaos हो गया है इसको वापस harmony में लाना है. लेकिन उसके लिए वो करता क्या है? आत्मा की. He restores the peace and purity of the soul. जब soul अपनी original state में आ जाएगी, प्रकृति अपने आप ठीक हो जाएगी,
बैलेंस
अपने आप बैलेंस. सो दैट्स हिज रोल. ही कम्स एट दिस टाइम, हील्स अस, रिस्टोर्स अस बैक टू दैट चार्ज्ड बैटरी. नेचर ऑटोमेटिकली टेक्स इट्स कोर्स.
टेक्स अस बैक ऑल्सो.
या ही टेक्स अस बैक एब्सोल्युटली, बिकॉज लिटिल रेस्ट ना. ही टेक्स अस बैक होम, वी रेस्ट फॉर लिटिल टाइम, देन कम बैक.
So, but who goes? Like whoever is in the dire need, actually, he can't take all of us. You know,
yes.
You know, like how does actually it's, you know, it's if we look at it, you know, right
now. उसके लिए हर एक बच्चा है. हर आत्मा उसका बच्चा है, भले उसे पहचाने या नहीं पहचाने. लेकिन हर आत्मा इस टाइम जो सृष्टि पर है वो उस परमात्मा शिव बाबा का बच्चा है. उसके लिए तो सभी का दुख एक बराबर है. लेकिन वो ये चाहता है कि हर आत्मा पहचान ले और अपने दुखों से मुक्त हो जाए. और वो ही ये प्रयास चला है जो हम हमेशा कहते हैं कि इतने सारे सेंटर्स, 130 कंट्रीज, 8500 सेंटर्स, ये सब सेंटर्स खोलने की क्या आवश्यकता है. दिल्ली शहर में आज हम हैं, 150 सेवा केंद्र है. क्यों? ताकि विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स ऑफ वेयर यू आर स्टेइंग यू गेट दैट हीलिंग. आप सेंटर पे आते हैं, आपको शिव बाबा का परिचय मिलता है, अपना मिलता है, एंड योर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स एंड यू आर रेडी. नॉट अबाउट टेकिंग द जर्नी होम, लेकिन व्हाट अबाउट माय लाइफ नाउ. वो तो बाद में जो होना है वो अलग, लेकिन अभी के जीवन क्या, वो जीवन बहुत सुंदर बन जाते हैं.
आई कैन रियली अंडरस्टैंड, यू नो, लाइक इट्स अगर हम शिव बाबा की बात करें, उस परिचय की बात करें, उस एहसास की बात करें, आई कैन फील इट, यू नो. बट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, एक मैं सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के इस वक्त में सुख, खुशी, प्यार नहीं मिल रहा है, हम त्राही त्राही कर रहे हैं, हम मंदिरों में जा रहे हैं, वहां नहीं कुछ समझ में आ रहा, फिर हम उन रिचुअल्स में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतना कन्फ्यूजन, उनसे कैसे बाहर निकल सकते इन द रियल.
मतलब एक है कि जो लोग समझ के कर रहे हैं, यू नो, पूरी अंडरस्टैंडिंग से, पूरे फेथ के साथ. लेकिन एक है जो सिर्फ डर के मारे कर रहे हैं, यू नो, कि मेरी नौकरी लग जाए तो उसके लिए ये इतने दिन उपवास, मेरी ये हो जाए तो उसके लिए ये पहनना है, उसके लिए ये हवन करना है, भाई आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, आप इतना दान कर दो. तो ये सारा फियर है. ये तो जैसे ज्ञान नहीं है तो हमें भय में, यू नो, अब हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब सिर्फ कुछ करने से थोड़ी कष्ट दूर हो जाएगा. कष्ट तो मुझ आत्मा की कमजोरी है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा. कमजोरी अंदर है, रिचुअल हम बाहर करते हैं, यू नो. हवन है, हवन करना है, योग अग्नि.
तुम भगवान से नहीं डरते इसलिए ये हो रहा है आपके साथ, यू नो. जनरली ये कहा जाता भगवान से डरो. हम भगवान से
डरो इसलिए कह देते हैं क्योंकि अच्छा कर्म करो, यू नो. जो हमने कहा भगवान कहते हैं कि हर जगह है, देख रहा है, लेकिन एक्चुअली जब हमें सच में उसका परिचय मिल जाता है कि वो हमारा, यू नो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है जो फियर पर बेस्ड होता है, यू नो, दुनिया में भी, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत डरा के चलते हैं और बच्चे के अंदर कभी वो प्यार नहीं, मतलब प्यार होता है लेकिन नो फियर है. तो व्हाट आई फील इज फियर एंड लव कैन नेवर बी टुगेदर, यू नो. देयर लव दे कैन नेवर बी फियर.
एक्चुअली बच्चा फिर हमेशा चाहेगा कि मैं उनकी आंखों में कोशिश करूं, हाँ, करता हूं.
तो फिर वो अपना नेचुरल नहीं होता, वो डर में रहता है. डर की वजह से वो झूठ भी बोल देता है, उल्टा डर की वजह से ज्यादा गलत काम करता है, छुपाने की कोशिश करता है. अब उसी तरह परमात्मा के साथ एक है कि हम डर का रिलेशनशिप बनाकर रखे, पर वो इसलिए क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं थे. लेकिन वो पिता है, गुस्सा तो वो कर ही नहीं सकता, वो तो प्यार का सागर है. ही लव्स मी, ही इज द ओनली वन हु लव्स मी अनकंडीशनली, यू नो, अनकंडीशनल लव. जो हम दुनिया में
कैन नेवर बी एंग्री, वंडरफुल. गुस्सा तो भगवान आपसे नाराज है, मतलब
भगवान कभी नाराज नहीं हो सकता.
See, लेकिन लुक एट इट, आई थिंक आई हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स, यू नो, लाइक
भगवान नाराज नहीं हो सकता. See, that is the beauty. उसके अंदर कोई विकार नहीं है, बिकॉज ही इज एवर प्योर. तो गुस्सा कैसे आएगा उसको, ये हमने जो बना दिए बहुत सारे, परमात्मा को गुस्सा आया तो विनाश हो गया, ये यू नो ये सारी चीजें, परमात्मा को कभी गुस्सा आ गया
तो परमात्मा कैसे रहा? Because he is telling us not to be angry.
Yeah. He is the ocean of peace. Yeah. He cannot have anger. वो पिता है, वो रहम दिल है, वो कल्याणकारी है, वो क्षमा का सागर है,
वो लविंग है, वो प्यार. हाँ,
सबसे पहली चीज तो प्यार है. इतना प्यार देता है, मतलब इवन द टर्म अनकंडीशनल लव विच आई यूज टू हियर पहले, यू नो अनकंडीशनल लव, एंड आई फील नो ह्यूमन बींग कैन गिव अनकंडीशनल लव. इट्स नॉट पॉसिबल. अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, नो ह्यूमन बींग कैन डू इट. आप कितना भी ट्राई कर लो, कहीं ना कोई एक्सपेक्टेशन पूरी सी हो जाती है, और जब वो नहीं मीट होती तो हर्ट होता है. वो हर्ट नहीं होता. वो हर्ट नहीं होता, वो बहुत प्यार देता है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कहें फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. यू नो, जहां पेरेंट बहुत प्यार देता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि और भी ज्यादा सही दिशा में चलने का दिल करता है, क्योंकि वो इतना प्यार देता है. तो आपको लगता है कि वो जो आपको शिक्षा दे रहा है आप उसकी हर शिक्षा को बस फॉलो करते रहो, क्योंकि आपको ये पता है कि वो हर चीज आपके फायदे के लिए है. सो ही इज अ वेरी 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 लविंग
ना. जो हमने बात उस वक्त की थी, आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात,
आंख बंद करके, क्योंकि ये पता है ना कौन बोल रहा है. कौन बोल रहा है तो निश्चय है. इसको ब्लाइंड फेथ नहीं कहेंगे. कई लोग कहते हैं ब्लाइंड फेथ है. नहीं, जब अगर हमें एक इंसान पर भी निश्चय हो जाए, सपोज मुझे निश्चय है कि आप हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही बोलोगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी आपको.
नहीं, पर हम अपने पेरेंट को क्वेश्चन कब करते हैं? आई डोंट नो एनीवन एनी चाइल्ड क्वेश्चनिंग.
नहीं, बट अभी क्या होता है, कई बार चिल्ड्रेन हैव दिस थिंग विद देयर पेरेंट्स कि नहीं ये पता नहीं मैं, इनका अपना इसमें रीजन है. इनका ये मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं. यू नो, इसमें मेरा फायदा नहीं है, मेरा फायदा डॉक्टर बनने में है, ये चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं. सो ये सब लिमिटेशंस. अब पेरेंट एक्चुअली अच्छा ही सोचता है. इवन मनुष्य आत्मा कभी बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते, लेकिन ईगो की वजह से अपनी थिंकिंग, यू नो अपने लिमिटेड बैरियर्स हैं, लेकिन वो तो साकारी नहीं है ना. वो साकारी लिमिटेशंस में बाउंडेड नहीं है. वो हमारी बड़ी पिक्चर देख सकता है. ही इज नॉट बाउंडेड बाय टाइम एंड स्पेस.
एंड अगेन, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो लॉ ऑफ नेचर है या लॉ ऑफ कार्मिक डेथ,
वो हमें
वो तो करना ही है.
लेकिन परमात्मा हमें सही कर्म करना सिखा देता है ना. जैसे आप माँ हैं तो आप अपने बच्चे को सही कर्म सिखाएंगे. अगर वो आपके कहे अनुसार चलते गए तो उसका रिटर्न क्या होगा? सही का सही है. तो रॉन्ग होने की कोई मार्जिन नहीं है. तो सबसे पहली चीज तो हम कहेंगे परमात्मा से डरना नहीं. बिल्कुल नहीं डरना.
बिकॉज
ही इज जस्ट टू ब्यूटिफुल. ही इज जस्ट टू ब्यूटिफुल. डोंट हैव टू गेट स्केर्ड ऑफ हिम. ही लव्स यू एंड यू नीड टू लव हिम बैक. एंड दैट्स द रिलेशनशिप. Relationship with God is exchange of that purest love.
I love him, but then how do I tell him? You know, like how do I? I think, you know, like now you see. अभी तक I think हम जितने भी हम बातचीत करते आ रहे हैं, हमने खुद को भी पहचान लिया. और you know, like we were not even aware, but the moment the picture is clear, actually I can visualize. We can all visualize. You know, lot of confusions cleared. Even if we had taken it as an assumption.
Yes.
Shiv Baba, क्योंकि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हम नहीं चलिए नहीं मानते. Assumption पे ही हमने माना कि शिव बाबा है, और उसके बाद हमने ये पूरा लॉजिक दे देके हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट हो गई, विच इज आई थिंक सो ब्यूटिफुल, सो प्योर. नाउ हाउ डू आई गेट दैट लव?
वो जो हम याद की यात्रा शुरू करेंगे ना, विच वी विल सी कि वो कैसे उसको याद करना है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस रीगेन कर लीजिए कि वो मेरा पिता है, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे नाराज नहीं है, मुझे उसको खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है. जो बहुत सारे हमने विस्तार किया है ना कि भगवान को खुश करने के लिए यू नो
इसी तरह से करो ये करो,
वो बाह्य चीजों से हमारे वैसे भी नहीं खुश होगा. वो क्या चाहता है हमसे? वो हमसे ये रिचुअल्स नहीं चाहता है. वो चाहता है हम जागे, हम ये जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं हम जागे और अपनी शक्ति को फिर से पहचाने. ये फिजिकल जो है ही फिजिकल नहीं है, जो फिजिकल है ही नहीं, तो वो हमारी फिजिकल चीजों से क्या खुश होगा? क्या उसको मैं उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है उसमें से. सो दैट कैन नॉट प्लीज हिम एट ऑल. सो स्टॉप फियरिंग एंड स्टॉप डूइंग एनीथिंग इन द नेम ऑफ फियर ऑफ गॉड. यू नो, इवन इफ समबडी इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स दोज थिंग्स, यूज योर इंटेलेक्ट, सोच कर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज इस समय जब हम भय में होते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे भय को एक्सप्लोइट करते हैं. यू नो, अभी अगर आपको, जैसे आप किसी नए शहर में चले जाओ और कोई आपको देखे कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, तो आपको एक्सप्लोइट करने के लिए 10 लोग मिल जाएंगे. इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बस अज्ञान में ठोकरे खाते हैं, तो उसको एक्सप्लोइट करने के लिए भी बहुत कुछ है. तो वो फिर यू नो देन इट बिकम्स लाइक मनी मेकिंग एंड सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन. तो उस एक्सप्लोइटेशन से हमें अपने आप को बचाना है और फेथ से चलना है. बिल्कुल.
तो ये कुछ बहुत सुंदर एक्चुअली कि कुछ बातें इतनी क्लियर है कि भगवान से हम डर नहीं सकते क्योंकि वो तो परम पिता है.
डरेंगे मतलब तो उल्टा अच्छा रिलेशन नहीं बनेगा.
हाँ, क्योंकि हमने एक रिश्ता बनाना है. रिश्ता बनाना है क्या, रिश्ता बना हुआ है, उस रिश्ते को याद करना है. एक्चुअली इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
ओम शांति.
ओम शांति. कितना सुंदर है हमारे पिता शिव बाबा. अगर हम मान भी लें, अज्यूम करते हैं कि हमने उन्हें माना, वो हमारे पिता हैं, परम पिता जिन्हें हम तलाश रहे थे. उनका परिचय इतना खूबसूरत है, कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली है. मैं अपने आप कह सकती हूँ. हो सकता है आपके पास अभी भी कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई. आपका स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल द्वारा या फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं.